इससे पहले हम अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूं। मैं हमेशा उसका वचन पढ़ना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे वचन असफल हो जाएंगे। वो मनुष्य के हैं, परंतु उसका वचन असफल नहीं हो सकता। और वे जो मूल पाठ के साथ बने रहते हैं और आदि आदि, आइए हम मत्ती के 14वें अध्याय से पढ़ें, आज रात्रि 22वें पद से आरंभ करके। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आइए हम अपने सिर प्रार्थना के लिए झुकाएं। जबकि हमारे सिर और हृदय परमेश्वर के सामने झुके हुए हैं, क्या इस भवन में आज रात आवश्यकता है जो अपने हाथों को उठाने के द्वारा परमेश्वर को बताना चाहते हैं और प्रार्थना में याद रखवाना चाहते हैं? प्रभु, आप उन पर दृष्टि करें और हम पर अनुग्रहकारी हों। हमारे स्वर्गीय पिता, अब हम तेरी उपस्थिति में मार्ग द्वारा आ रहे हैं, और प्रभु यीशु के नाम में तेरे आशीषित आश्वासन के जानने के साथ कि उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, यदि हम उसके नाम में कुछ भी मांगेंगे तो वो आप हमें प्रदान करेंगे। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। जैसा हम इस विषय में अनुभव करते हैं, शब्द प्रकट नहीं कर सकते उस आश्वासन के साथ जो हमारे पास है कि इस समय आप हमारी सुन रहे हैं। प्रभु, आपने इन हाथों को देखा है, आप जानते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है। आप सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अनंत परमेश्वर हैं, और हम जानते हैं कि आप लोगों के हृदयों को जानते हैं। इससे पहले कि हम सिरज जाते, आप हमारे विचारों को जानते हैं। आप हर विचार को जानते हैं जो कि कभी हमारा था, क्योंकि आप अनंत हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी में, जैसे कि हमारी इच्छाएं आपके पास पहुंच रही हैं। प्रभु, स्वर्ग से नीचे देखें और हमारी विनतियां अपने हृदय पर लें प्रभु, और अपने महिमा की भरपूरी के अनुसार हमें उत्तर दें। हमें हमारी हृदय की इच्छा प्रदान करें, ये विश्वास करते हुए कि ये आपकी आत्मिक इच्छा है, और हम जानते हैं कि ये आपकी प्रसन्नता है कि आप अपनी इच्छा पूरी करें। प्रभु, आज रात अपनी महान उपस्थिति को हम पर फिर से उंडेल दे। रोगियों को चंगा करें, खोए हुओं को बचाएं, जो पाप में और अपराधों में मरे हुए हैं उन्हें जिला लें, और आज रात्रि उन्हें नए जीवन में ले आएं। होने दे कि हम यीशु को देखें, ये हम उसके नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। हमें खेद है कि बैठने के लिए हम लोगों को स्थान देने योग्य नहीं है, परंतु पहली रात्रि से वे कहते हैं कि उन्हें बड़ी भीड़ लोगों की वापस करनी पड़ी, इसलिए इसके लिए हमें खेद है। और भाई ग्रांट जा नहीं सके, दूसरा कमरा बना रहे हैं, या तो मैं विश्वास करता हूं कि बाईं ओर ये इस आड़ को हटाने जा रहे हैं। कीमती कीमती भाइयों ने आज मुझसे ही कहा, यदि मैं इसे वार्षिक चीज बना दूं, उसके डालास के आराधनालय में वापस जाऊं। एक महान निमंत्रण जैसा कि इस घड़ी में है, जबकि दरवाजे तेजी से बंद हो रहे हैं, और तब ये व्यक्ति मुझे चाहता है कि मैं वापस आऊं और इसे वार्षिक अवसर बनाऊं। मैं इसकी सराहना करता हूं। आज प्रातः मेरे पास उनके साथ संगति करने का समय था, भाई गॉर्डन लिंड से और उनमें से बहुत से भाई पेरी ग्रीन, जो आने वाली सभा का जो बी माउंट में होने वाली है खर्चा उठाएंगे, आज रात्रि यहाँ मेरे पीछे बैठे हैं, और हमारे बहुत सारे मित्र भाई डॉन और उनकी पत्नी, उन्हें हम यहाँ पर पाकर आनंदित हैं। प्रभु उन्हें आशीषित करे। आज रात्रि बस मैं अपने संदेश को इतना साधारण बनाने का यत्न कर रहा हूँ कि बालक भी समझ सकें। कल दोपहर बाद सुसमाचार सुनाने की सेवा है, और मेरी इच्छा है कि आप सब आ सकते हैं। अब यदि आपके अपने आराधनालय में सभाएं हैं, तो क्यों नहीं वहीं जहां आप हैं वहीं रुकें। हम नहीं चाहते कि कोई अपनी कलीसिया छोड़े। और यदि आप रोगी हैं और प्रार्थना करवाने के लिए आना चाहते हैं, और आपकी कलीसिया की सभा शाम को हो तो अपने पास्टर से इस विषय में कहें, इस प्रकार वो बुरा नहीं मानेगा। आप समझे? उन्हें मालूम हो कि हम यहाँ सहयोग करते हैं यीशु मसीह की समस्त देह जो कि यहाँ डालास में और आसपास में परदेशी है। इसलिए कल दोपहर बाद मैं सोचता हूँ 2:30 बजे मुझे एक सुसमाचार सुनाने का संदेश देना है और तब हम सारे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सारे प्रार्थना पत्र उठा लें और वो चीजें जो इस सप्ताह छूट गई हैं और कल उन सब के लिए प्रार्थना करें। अब आज रात्रि मेरा विषय कुछ क्षणों के लिए एक नाटक के समान है और आज रात्रि जितना हो सकेगा मैं लूंगा बीमारों की प्रार्थना के लिए। मेरा मूल पाठ है डरो नहीं मैं हूँ। यीशु बोल रहा है। मेरा विषय है एक गवाही झील में। ये लगभग दोपहर बाद की बात है। सूर्य डूब रहा होगा जब ये हुआ और अब इस प्रकार का गर्म दिन रहा होगा जैसे कि यहाँ पर है। वातानुकूलित मशीन खराब है और वे इसे ठीक कर रहे हैं। यही कारण है कि मैंने अपना विषय बदल दिया जिस पर कि मैं बोलने जा रहा था ताकि मैं जल्द समाप्त कर सकूं, ताकि आपको इस गर्मी में इस प्रकार ना बैठना पड़े। ये बड़ा मछुआरा सारे दिन में क्या हुआ ये देखने के बाद यीशु को उसकी महान सेवकाई में देख रहा था। उसके पीछे चलकर मुझे उन दिनों में जीना बहुत अच्छा लगता, परंतु आप जानते हैं मैं प्रसन्न हूँ कि अब भी मुझे विशेषाधिकार प्राप्त है कि वही चीजें करूँ और उसे कार्य करते हुए देखूँ। और आज उसे कार्य करते हुए देखना महान बात है बजाय तब के। अब मुझे इसमें अधिक विश्वास है और अब मुझे उसमें बजाय पहले की अब अधिक विश्वास है, क्योंकि हमारे पास 2000 वर्ष थे कि सिद्ध करें कि वो सुसमाचार ठीक है और 2000 वर्षों के पश्चात वो अब भी जीवित है। वही कर रहा है जैसे उसने तब किया। इसलिए हमारे पास बड़ा आश्वासन और अधिक दृढ़ नींव है विश्वास के लिए जितनी कि उनके पास तब था, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य इस दावे के साथ चारों ओर घूम रहा था कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था और परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर उस दिन में अपने प्रतिज्ञा के वचन को उसके द्वारा प्रमाणित कर रहा था। और उनके पास कुछ कारण थे कि संदेह करें। वे लोग धर्मज्ञानी थे और आप ध्यान दें कि ये दुख की बात थी, ये वास्तव में दयनीय था, क्योंकि वे धर्मज्ञानी उसका विश्वास कर लेते यदि परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा न कर दिया होता। बाइबल ऐसा बताती है। और क्या आप जानते हैं कि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो उनकी आंखों को आज फिर से अंधी कर देगा ताकि वे उसे ना देख सकें। वे मतवाले, घमंडी, परमेश्वर से अधिक सुख विलास के चाहने वाले, झगड़ा मचाने वाले, झूठा दोष लगाने वाले, असंयमी, भले के बैरी, भक्ति का भेष तो भरेंगे परंतु उसकी सामर्थ को ना मानेंगे। बिल्कुल वैसी ही प्रतिज्ञा फिर से वही है और आप कुछ नहीं कर सकते, परंतु उनके लिए खेद का अनुभव कर सकते हैं और उनकी आंखें आज तक अंधी हैं। वे वचन जिनकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो इन दिनों में घटित होगी इस घड़ी में और हम उसे साफ साफ देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। और तब लोग देखते हैं और अपना सिर हिलाते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। ये दयनीय बात है, परंतु तो भी वचन को पूरा होना है, इसे इसी प्रकार होना है। इसलिए ये प्रेरित परमेश्वर के चुने हुए थे। क्या आपने ध्यान दिया यीशु ने उन्हें बताया संसार के रचने से पहले उसने उन्हें चुना और वे परमेश्वर के अभिषिक्त बीज थे। इसी कारण जब परेशानियां आती हैं और लोग प्रश्न पर यीशु को जैसे कि अलग खड़ा हुआ देखते हैं पर उनके लिए कोई प्रश्न नहीं होता, वे इसे नहीं समझ सके, परंतु वे दृढ़ संकल्प थे कि उसे छोड़ और कुछ नहीं जानना चाहते थे, केवल तेरे ही पास जीवन का वचन है। और वे इसके साथ स्थिर रहने के लिए दृढ़ संकल्प थे क्योंकि वे इस कार्य पद के लिए अभिषिक्त थे। और ऐसा आज है, वे पुरुष और महिलाएं जो अनंत जीवन के लिए अभिषिक्त हैं, वे अनंत जीवन के लिए आएंगे। वे सब जिन्हें पिता ने मुझे दिया है मेरे पास आएंगे, ये उसका वचन है और वो असफल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का वचन है। और अब हम इन प्रेरितों को देखते हैं जिनकी उस दिन महान सभा थी बाहर पहाड़ के किनारे मैदान में, और यीशु ने उन्हें बताया अब तुम आगे चलो और झील को मेरे आगे आगे पार करो। और वो वहाँ ऊपर पहाड़ पर जा रहा था अकेला प्रार्थना करने के लिए। और ये चेले मित्रों से मिलने के बाद मैं थोड़ी सी कल्पना कर सकता हूँ कि उन्होंने कैसा अनुभव किया, क्योंकि मित्रों से मिलना और फिर मित्रों से अलग होना, तभी आप उन्हें जान पाए थे और तभी आपको अलविदा कहना पड़ा। समस्त संसार में समुद्र पार मुझे हमेशा एक प्रकार का हृदय में पीड़ा होती है मित्रों से मिलने के पश्चात और उन्हें छोड़ना, ये जानते हुए कि बहुत से ऐसे हैं कि आप फिर कभी उनसे न्याय तक नहीं मिलने पाएंगे, ये एक प्रकार की दुख की बात है। मैं किनारे में घुसी हुई नाव की कल्पना कर सकता हूँ और शमौन पतरस अपने भूरे भूरे हाथों और कंधों के साथ नाव में धक्का लगाया और झील में आगे बढ़ा दिया और वे उनको जो किनारे पर थे हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे और वे चिल्ला रहे थे फिर आना गुरु को लाना कि हम मिलें और आकर दूसरी बेदारी करना। आज हम बहुत आशीषित हुए हैं और नए मित्र हाथ हिला रहे थे और वो बाकी चेलों के साथ चढ़ गया और हो सकता है अपने भाई इंद्रियास के पास बैठ गया होगा और पतवार उठा ली। तब नावें या तो हवा से या पतवारों से खेई जाती थी जो वे खींचते थे और तब हो सकता है वे दोनों नाव में बैठे हों दो दूसरी ओर और वे या दो एक गद्दी पर बल्कि हो सकता है छह या आठ पतवारों को रोकने वाले छल्ले हों वे समय में ही होंगे और इस प्रकार से वे नाव की आधार बल्ली को थामे रह सकते होंगे जब तूफान आता हो। तब हवा साधारण चल रही थी वे उसे बराबर खींच सकते थे। इस घटना से पहले वचन पढ़कर लगता है कि दोपहर बाद गर्मी थी और इसलिए वो बहुत ही शांत खुली धूप गर्म दोपहर थी। सूर्य अस्त हो रहा था और वे जब पतवार से खे रहे थे और उन्हें ढीला छोड़ अपने हाथ हिला हिलाकर लोगों को अलविदा कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आपसे फिर मिलेंगे। जैसे जैसे वो झील में आगे बढ़ रहे थे और सूर्य अस्त और सांझ का उजियाला और तब कुछ देर पश्चात अंधेरा छाने लगा और पतवार चलाने की उन्होंने अच्छी गति पकड़ ली होगी और जब वे चप्पू गहरे सागर में होते हैं तो ये कठिन कार्य होता है और उनमें से अधिकतर मछुआरे थे बड़े शक्तिशाली मनुष्य सागर के जानने वाले और इसलिए वे आशा कर रहे थे कि यीशु नाव में बैठकर उनके पीछे पीछे जल्द ही आएगा। क्यों वे वहां से बढ़ चले और उन्होंने किनारा छोड़ा ही होगा एक प्रकार से अपनी नाव आरंभ ही की होगी और फिर बढ़ने दी। हो सकता है युवा यूहन्ना सबसे पहले बोल पड़ा हो क्योंकि वो झुंड में सबसे छोटा था और ऐसा हुआ होगा कि उसने कहा मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ हम थोड़ा सा किनारे से बढ़ चले हैं एक मिनट के लिए रुको हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वो अभी तक नहीं आया इसलिए हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर सकते हैं और एक प्रकार से थोड़ा सा सस्ता सकते हैं। और जैसे ही वो वहाँ अपना सिर थोड़ा सा नीचे करके बैठ गया उसने गवाही की सभा आरंभ की होगी और आज मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूँ। हो सकता है वही हो जो पहले उठा हो और कहा हो भाइयों इससे कोई मतलब नहीं कि लोग क्या कहते हैं और कितना कोई अविश्वास करना चाहता है और आज के बाद से मैं निश्चित हो गया हूँ कि हम किसी धोखेबाज का अनुकरण नहीं कर रहे हैं और हम परमेश्वर से कम किसी और का अनुकरण नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता जो आज उसने किया जब तक कि वो परमेश्वर ना हो। आप जानते हैं जब उसने वे रोटियां ली और तोड़ी और वहाँ 5,000 को खिला दी ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। आज भी इस विषय में प्रश्न हो सकता है अब मैं केवल उसकी गवाही को दोहरा रहा हूँ जैसे कि वो थी परंतु ये तय हो गया। बोला मुझे स्मरण है कि वर्षों पहले मैं यर्दन के पास रहा करता था और मैं स्मरण कर सकता हूँ एक छोटे लड़के के समान कैसे मेरी यहूदिन सुंदर सी माँ दोपहर बाद मुझे गोद में उठाकर और मुझे बरामदे में झूला झुलाती थी जब यर्दन के किनारे किनारे फूल खिले हुए हुआ करते थे और वो उधर पार रेगिस्तान की ओर देखा करती थी जिधर से हमारे लोग रेगिस्तान में से होते हुए लाए गए थे। वो मुझे बाइबल की कहानियाँ सुनाती थी और उसमें से एक बड़ी कहानी मुझे याद है सुमेनी स्त्री की थी जब उसका छोटा लड़का मर गया था और भविष्यद्वक्ता ने उस लड़के को फिर से मृत्यु से जिला दिया था वो बड़ी रोमांच वाली कहानी हुआ करती थी। परंतु एक सबसे रोमांचित कहानी जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी वो कहती होगी यूहन्ना तुम एक छोटे लड़के हो परंतु मैं चाहती हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो स्मरण रखो कि वो महान यहोवा हमारे लोगों को मिस्र से निकाल लाया और नदी के उस पार हम जंगल में से होते हुए आए और पूरे 40 वर्षों तक उन्होंने जंगल में यात्रा की। कपड़े खरीदने का कोई स्थान नहीं था और कोई खाने का स्थान नहीं था और परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटी गिराई हर रात्रि में और हमारे लोगों को जंगल में खिलाया क्योंकि वे अपने कर्तव्य पे थे महान यहोवा का अनुकरण कर रहे थे। और अब किसी दिन यहोवा इस पृथ्वी पर शरीर बनकर आने वाला है एक मनुष्य के रूप में वो अभिषिक्त कहलाएगा मसीह और मैं स्मरण करता हूँ वो कहेगा एक छोटे लड़के के समान कैसे मुझे उस छोटे लड़के का मस्तिष्क उसे चित्रित करने का यत्न करता था। कैसे परमेश्वर ने उन सबको खिलाया, 20,50,000 लोगों को उस जंगल में, इतनी सारी रोटी कहाँ से लाया? और मैं पूछा करता था, माँ क्या उसके पास, क्या यहोवा के पास आकाश में ढेर सारे तंदूर थे और वो उसमें सारी रोटियां पकाता था और रात में नीचे उतर कर और लोगों के लिए मैदान में रख देता था और यहोवा का बड़ा आकाश तंदूरों से भरा पड़ा था? और वो कहती होगी, नहीं बेटा, तुम समझने के लिए बहुत छोटे हो। देखो, यहोवा सृष्टि करता है, उसे तंदूर की आवश्यकता नहीं। वो केवल बोलता है और उसका वचन प्रकट होता है। जब वो बोलता है, वो महान यहोवा है और वो केवल बोलता है और स्वर्गदूत पृथ्वी पर लोगों के लिए बांट देते हैं। और आज जब मैंने उसे वहाँ खड़े हुए देखा था, तो क्या आपने ध्यान दिया? वही आभास उसके मुख पर था, उसके मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं था। मैं उसके पीछे वहाँ चट्टान पर चढ़ गया और उसे देखा, और जैसे कि वो रोटी लेता और तोड़ता और उनको देता अपने सेवकों को, हम लोगों को बांटने के लिए, और जब तक वो तोड़ने के लिए फिर पीछे मुड़ता, रोटी फिर से पूरी हो जाती। और ये उसने सैकड़ों बार किया, जब तक कि हर किसी का पेट नहीं भर गया और टोकरियां भरी हुई उठाई गईं। मैं जानता हूँ वो यहोवा को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने यहोवा के समान कार्य किया है। केवल यहोवा ही सृष्टि कर सकता है, और मैं जानता हूँ कि वो मनुष्य धोखेबाज नहीं हो सकता। केवल एक ही सृष्टि करता है और वो यहोवा है। और अब वो सारी बातें जो मैं देख चुका हूँ, उससे मैं संतुष्ट हूँ। और अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा हृदय पूरी तरह से समर्पित है, और अब मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि वो केवल मात्र भविष्यद्वक्ता ही नहीं है। वो भविष्यद्वक्ता है, परंतु वो भविष्यद्वक्ता से भी अधिक है। वो और कुछ नहीं, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच वास कर रहा है, क्योंकि उसने रोटी की सृष्टि की और उसमें यहोवा का स्वभाव है। कोई आश्चर्य नहीं, वो कह सकता होगा, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो, परंतु यदि मैं अपने पिता के काम करता हूं तो तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तो मेरे कामों का विश्वास करो, क्योंकि वे ही मेरी गवाही देते हैं और बताते हैं कि मैं कौन हूं। ऐसा लगता है लोग सरलता से देख सकते होंगे। यूहन्ना संतुष्ट था कि वो मसीह था, जिसके विषय में यशायाह ने कहा, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम शांति का राजकुमार होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत पिता। और यूहन्ना संतुष्ट था क्योंकि जो उसने देखा, नवयुवक अपनी गवाही दे रहा है। उसी समय के लगभग शमौन पत्रस बोला, अब जरा एक मिनट, यदि हम गवाहियों की सभा करने जा रहे हैं तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। आप जानते हैं कि मैं सारी बातों में संशयी दृष्टि रखने वाला था, जब इंद्रियास ने, मेरे भाई ने, जिसने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता की बेदारी सभाओं में भाग लिया, जिसने गवाही दी थी कि मसीह आने वाला था और उसका परिचय कराएगा, और जो इंद्रियास मुझे बताएगा, उसके लिए मैं थोड़ी संशय दृष्टि रखता था, क्योंकि मैंने बहुत प्रकार के मसीहों की कहानियां सुन रखी थी और बहुत कुछ। भाइयों, आप सबको मेरे बूढ़े पिता स्मरण होंगे, उनका नाम योना था, और आपको उसकी याद होगी कि वो कितना कट्टर विश्वासी था। मैं कैसे वो बात याद कर सकता हूँ? माँ और पिता और हम सब, जैसे कि जीवन यापन के लिए मछली पकड़ते थे और हम कोई मछली नहीं पकड़ पाए, हमें रोटी चाहिए, और कैसे हम जमीन पर उतरे और परमेश्वर से प्रार्थना की, आज हमें पकड़ने के लिए मछली दे परमेश्वर, ताकि हम अपनी मछली बेच सकें और अपने कर्जे चुका सकें और खाने के लिए खाना लें, और कैसे हम तूफान में समुद्र में गए और उन तूफानों का सामना किया। और पिता, मैं उनके सफेद बालों को पीठ पर लटके हुए देख सकता हूँ। एक दिन नाव के किनारे पर बैठकर मुझसे कहने लगे, शमाउन, तुम मेरे बड़े पुत्र हो, शमाउन, तुम जानते हो मैंने सदा विश्वास किया है कि मसीह को देखूंगा। हमारे लोग अदन से उसकी राह देख रहे हैं, और हमें निश्चय है कि वो आ रहा है, कोई मतलब नहीं कितनी देर बाद, ये 4,000 वर्षों पहले आप कहते हैं, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह आएगा, और हर यहूदी विश्वास करता है कि वो अपनी पीढ़ी में मसीह को देखेगा। मैं उसे अपनी पीढ़ी में देखने की आशा करता हूँ, परंतु ऐसा लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने समुद्र में जाना बंद कर दिया है और अपने दर्द और दुख पा रहा हूँ। हो सकता है मैं उसे अपने समय में न देख सकूँ, परंतु मेरे पुत्र, हो सकता है तुम, और मैं तुम्हें पवित्र वचन में शिक्षित करना चाहता हूँ। पुत्र, इससे पहले मसीह दृश्य में आए तो बहुत सी चीजें चारों ओर घटित होंगी, क्योंकि शैतान ये करेगा, कि वास्तविक मसीह के प्रभाव को कम करे जब वो आता है। हमेशा से यही हुआ है, अब भी वैसा ही है। उसने कहा, तब हम पाते हैं, मुझे स्मरण है, उसने मेरे गले में हाथ डाला और कहा, पुत्र, केवल एक ही विधि है कि तुम मसीह को पहचान सकते हो। अब हमें बिना भविष्यद्वक्ता के सैकड़ों वर्ष हो गए हैं। मलाकी हमारा अंतिम भविष्यद्वक्ता था, ये 400 वर्ष पहले। हमारे पास कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, परंतु स्मरण रखना, मूसा ने हमें वचन में बताया है कि जब मसीह आता है तो वो एक भविष्यद्वक्ता होगा। जब वो दृश्य में आता है, हम यहूदियों को सिखाया गया है कि भविष्यद्वक्ता का विश्वास करें, और संसार में मसीह की यात्रा परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। उसने यही प्रतिज्ञा की है, और वचन सदा भविष्यद्वक्ता के पास आता है, और भविष्यद्वक्ता उस वचन को प्रमाणित करता है। मेरे पुत्र, इस बात को न भूलना, बहुत सी बड़ी चीजें उठ सकती हैं, बहुत से उत्साह और बड़ी बड़ी चीजें, परंतु स्मरण रखना कि मसीह भविष्यद्वक्ता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी अपनी विधि नहीं बदलता, और उसने कहा कि मसीह भविष्यद्वक्ता होगा। इसलिए मेरे पुत्र, स्मरण रखो, भविष्यद्वक्ता वे होते हैं जिनके पास प्रभु का वचन होता है, और मसीह आता है तो वो भविष्यद्वक्ता होगा। मैं अभी भी उसके हाथ को अनुभव कर सकता हूँ, शमौन ने कहा, जैसा कि उसने मेरे गले में डाल रखा था, और इंद्रियास वहीं खड़ा हुआ उस समय जाल धो रहा था। इंद्रियास, तुम्हें याद है? हाँ शमौन, मुझे याद है। और इंद्रियास मुझे बताने का यत्न कर रहा था कि ये यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था, और मुझे करने के लिए और कार्य थे, मछली बेचनी थी और आदि आदि। इसलिए पिता वर्षों पहले मर गए, परंतु मैंने हमेशा उसे अपने मस्तिष्क में रखा। पिताजी ने कहा, ये मसीह पवित्र वचन द्वारा प्रमाणित भविष्यद्वक्ता होगा, और इसे भूलना नहीं, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, और ये वचन निरंतर भविष्यद्वक्ता के पास आता है। वो उसे प्रमाणित या प्रकट करता है कि उस युग के लिए क्या प्रतिज्ञा थी। और अब एक दिन शमौन ने कहा, उसने कहा, आप जानते हैं कि इंद्रियास ने मुझसे प्रार्थना सभा में जाने को कहा, और मैं वहाँ प्रार्थना सभा में गया जहाँ ये व्यक्ति यीशु था, और मैंने सब प्रकार की हवाएं सुनी। इससे पहले एक यीशु उठा था जिसने कुछ होने का दावा किया था, 400 लोगों को अगवा करके ले गया और वे सब नष्ट हो गए और आदि आदि। मैंने सोचा ये भी उसी तरह का है, किसी चीज का बड़ा उत्साही बेदारी या कोई महान नामधारी वे बनना जा रहे हैं। परंतु एक दिन मैंने सोचा मैं वहाँ इंद्रियास के साथ जाऊंगा, मेरे भाई के साथ, और मैं उस समय के विषय में कल्पना कर सकता हूँ कि नाव हिलने लगी, कोई चिल्लाने लगा और उसने कहा, बैठ जाओ, नाव को मत डगमगाओ, एक मिनट रुको, शांत बैठो। और उसने कहा, आप जानते हैं, जब मैं वहाँ गया और उसके सामने पहुँचा, पहली बार उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और मुझे बताया कि मेरा नाम क्या था। उसने पहले मुझे कभी नहीं देखा था। वो केवल मुझे ही नहीं जानता था, परंतु वो मेरे भक्त बूढ़े पिता को भी जानता था जिसने पवित्र वचन में मुझे निर्देश दिए थे, और मैं जानता था कि वो मसीह था। मेरे लिए ये यहीं पर तय हो गया, वो था, वो मेरे लिए, ये ठीक है। फिलिप उसने कहा होगा, क्या मैं यहाँ कुछ कह सकता हूँ? अब उसने कहा, भाई नतेल, आपको बुरा न लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने हस्तलेखों का वर्षों अध्ययन किया था कि मसीह कैसा होगा। परंतु जब मैंने उसे ये करते देखा, मैं उठा और अपने मित्र नतेल को यहाँ ले आया, और जब वो आया, नतेल ने कहा, ये मैं बताऊंगा, ये मुझे बताने दो। ओ, आप जानते हैं, जब यीशु ने आपके लिए कुछ किया है तो इसमें कुछ है, आप शांत खड़े ही नहीं रह सकते, आपको स्वयं जाकर ही बताना है। जब उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, मैं इस विषय में बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस विषय में कोई और जाने, न कि इसे कोई और बताए, मैं इसे स्वयं बताना चाहता हूँ। और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि नतेल को सारा उत्साह मिल गया और कहा, आप जानते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, फिलिपुस, मुझे तुम पर थोड़ा संशय था, तब तुमने मुझे बताया। मैंने पूछा, क्या कोई भली वस्तु नासरत से निकल सकती है? और तुमने मुझे सबसे अच्छा उत्तर दिया जो कि कोई भी दे सकता है, आओ और देख लो। आज ये ठीक कार्य करता है, ये ठीक बात है, घर बैठकर आलोचना मत कीजिए, आकर स्वयं देख लो। देखा? कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? कहा, आओ और स्वयं देख लो। और तुम्हें पता, तुमने मुझसे क्या कहा था? और जब मैं चलकर उसकी उपस्थिति में पहुंचा और उसने मुझे बताया कि मैं इब्री हूं और इजरायली, एक ईमानदार व्यक्ति, मैं ये जान गया, परंतु मुझे आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है? वो एक साधारण सा मनुष्य दिखाई देता है, और मैं आशा कर रहा था कि मसीह स्वर्ग से सुनहरे गलियारे से उतरेगा और सीधा यरूशलम में नामधारी मुखिया के पास जाकर कहेगा, कैफा, मैं आ गया हूँ। परंतु उन्होंने पाया कि वो नासरत से निकल कर आया, एक निर्धन परिवार से और वास्तव में उसकी बदनामी भी थी, एक अवैध बालक। यहाँ वो साधारण कपड़े पहने खड़ा था, ना कि याजक या किसी प्रकार का, केवल एक साधारण व्यक्ति। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा, ये कैसे मसीह हो सकता है? एक पुराना वस्त्र पहने हुए, ये उसे तब से पहने हैं जब से वो युवा था, और अब भी वही वस्त्र पहने हैं, और उसके बाल पीछे लटक रहे हैं, एक गली के साधारण व्यक्ति के समान। और वो मुझे उसके सामने ले गया और कहा, इससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया जब तू पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। मेरे लिए ये पक्का हो गया, वचन के द्वारा मैं जान गया कि ये मसीह था, यही है वो। हो सकता है नाव हिल गई होगी और गवाहियों की सभा चलती रही। ओ कितना बढ़िया समय था वहाँ उस झील पर, बहुत ही महान समय। इंद्रियास ने कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़े समय के लिए वो मेरे लिए उलझन थी। आपको स्मरण है जब हम यरूशलेम जा रहे थे, उसने कहा हमें ऊपर जाना है, मुझे सामरिया होकर जाना अवश्य है। इस प्रकार वो सामरिया में गया और सुखार नगर में, जब उसने हम सबको नगर में खाद्य सामग्री खरीदने के लिए भेज दिया। ओ हाँ, मुझे वो कुआं याद है। सारे के सारे बोले हाँ हाँ। नाव हिल रही थी, सबके पास एक शानदार गवाही थी उस बेदारी के समाप्त होने के पश्चात, इसलिए इनकी ये गवाहियों की सभा थी। और उसने कहा, हाँ तुम्हें याद है, हम चले गए, हमें आश्चर्य हुआ जब हमने स्वामी को एक नामी वेश्या से बातें करते देखा। ओ हमने सोचा, ओ ये बुरी बात है, उस युवा स्त्री से उसे बातें करते हुए देखकर और हमें भेज दिया, और यहाँ वो इस बदनाम स्त्री के पास वहाँ बैठा हुआ था। स्मरण है, हम झाड़ी के पीछे खड़े हुए थे और हमने उनकी बातें सुनी, और हमने उससे ये कहते सुना, स्त्री जा अपने पति को यहाँ बुला ला। और हमने कहा, भाई हो सकता है कि हम गलती पर हों, हो सकता है स्त्री कानूनी रूप में विवाहित हो। और उसने मुड़ के उसके मुख की ओर देखा और कहा, श्रीमान मेरे पास कोई पति नहीं है। तुम्हें स्मरण है कि कैसे हमारे हृदय बैठ गए थे? हमारा महान मसीह जिस पर हमें भरोसा था, यहाँ झूठ में पकड़वा गया, एक गड़बड़ी हो गई। उसने कहा, जा अपने पति को बुला कर ला, और वो कहती है कि उसके पास कोई पति नहीं है। अब ये तो उस पर उल्टा पड़ गया। याद करिए, हम सब ने कैसे आश्चर्य से देखा था और हमारी सांसें रुक गई थी। हाँ मुझे याद है। तब आपको स्मरण है अगला वचन, उसने कहा, तूने सच कहा है, क्योंकि तेरे पांच पति थे और अब जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा नहीं है। ओ तुम्हें झाड़ी के पीछे की गवाही स्मरण है? ओ देखिए, आप उसे घेर नहीं सकते, वो परमेश्वर है। ओ शमाऊ ने कहा, वो तो बस। इंद्रियास ने कहा, मेरे लिए तय हो गया। बर्तुमल ने कहा, रुको, मैं भी अपनी गवाही देना चाहता हूँ भाइयों, क्या मैं दे सकता हूँ? ओ हाँ, मैं समझता हूँ कि तुम दे सकते हो, हमारे पास बहुत समय है, वो अभी तक नहीं आया, इसलिए हम थोड़ा सा और खेलेंगे। बर्तो मई आगे बढ़ो, तुम गवाही दो। भाई मेरे लिए एक महान बात, आपको स्मरण है हमारी एक बहन यरूशलेम में जिसका नाम रिबका है? हाँ हाँ, और उसका पति नीचे रेस्टोरेंट चलाता है, वो व्यापारी था, उसका नाम जकई था। हाँ हाँ, मुझे उसकी अच्छी तरह से याद है। आपको स्मरण है, वो हमारी बहनों में से एक थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया था और वो डर रही थी कि जकई ये सब कुछ बिना यीशु को स्वीकार किए ले लेगा। और हो जकई वहाँ के याजक का एक बहुत अच्छा मित्र था, इसलिए वो प्रार्थना कर रही थी कि कुछ घटित हो जाए, कि उसकी आंखें खुल जाएं और वो ये पहचान लेगा, ये वो गुरु है, ये परमेश्वर का प्रमाणित वचन है, हमारे बीच में देहधारी है। हमने उसे बताने का यत्न किया, उसे बताया कि कैसे नासरत का यीशु हृदय के गुप्त विचारों को जान लेता है। ये दर्शाता है कि वो वचन था, क्योंकि वचन हृदय के विचारों को परख लेता है। निरर्थक बात, उसने कहा, मैं याजक पर विश्वास करता हूँ, याजक जो भी कहता है मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो नगर के सारे कार्यों से संबंधित है, किवानीस और सब कुछ आपको मालूम है, इसलिए थोड़ा कठिन था कि उसे इस पर सहमत किया जाए। इसलिए रिबका ने हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा था, और हर बार जब हम विषय पर आते कि वो भरोसा रखता है, वो कहता बेकार की बात, याजक कहता है वो बालजबूल है, वो शैतान है, और वो केवल टेलीपैथी दूर संवेदी, इसमें इतना ही है और इससे कुछ नहीं होता। आज के दिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास सैकड़ों वर्षों से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। और कैसे वो व्यक्ति जिसके पास संगति का परिचय पत्र भी नहीं है, वो कैसे भविष्यद्वक्ता हो सकता है? वो नहीं, किसी भी तरह से वो ये नहीं हो सकता। परंतु आप जानते हैं, रिबका उसकी पत्नी अड़ी रही, प्रार्थना करती रही, और एक प्रातः जब यीशु नगर में आ रहा था, तब हमने देखा, रिबका ने हमें बताया कि जकई उसे देखने सड़क पर गया है। इसलिए ये विश्वास नहीं करता था कि वो भर सकता था। इसलिए उसने कहा, मैं उसे थोड़ा सा देखूंगा। कैसे उसने जब हम उस दिन रेस्तरां में खाना खा रहे थे तब हमें गवाही दी। इसलिए वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, आप जानते हैं। उसने कहा, मैं अपने आप को यहाँ छिपा लूंगा तो वो मुझे देख नहीं पाएगा। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत ही गिट्ठा, और नीचे से भीड़ में से उसे नहीं देख सकता। इसलिए मैं यहाँ पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, और वहाँ गुद्दे पर पहुँच गया और इन डालियों के सहारे बैठ गया। ये अच्छा स्थान है कि बैठकर ध्यान से देखा जाए। यहाँ पर आपके दो मार्ग मिलते हैं, आपका और परमेश्वर का। आपके विचार इस पर सोचने के लिए ये एक अच्छी चीज है। इसलिए उसने कहा, आप जानते हैं कि क्या उसे भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। वो हो सकता है, ये संभव हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ से उसे भली प्रकार से देखूंगा और वो मुझे नहीं जान पाएगा। इसलिए मैं सारे पत्ते लेकर इस तरह से खींच लूंगा अपने चारों ओर और अपने आप को छिपा लूंगा। इस प्रकार से वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। और जब वो इधर से आएगा मैं उसे देखूंगा, और यदि वो ठीक प्रकार का व्यक्ति नहीं लगा तो मैं उसे अपने मस्तिष्क के विचार यही पेड़ पर से ही बैठे बैठे बता दूंगा। इसलिए उसने देखा और पत्तों को लिए ताकि उचक कर और उसे देख ले जब वो इधर कोने की ओर आता है। और जब वो कोने की ओर आया सड़क पर चलते हुए, आप जानते हैं, एक ओर से दूसरी ओर देखते हुए, और चेले कह रहे थे, एक ओर खड़े हों, मुझे खेद है, और लोग बीमार बालकों के संग और दूसरी बातें, मुझे खेद है, गुरु बहुत ही बुरी तरह थक गए हैं। पिछली रात्रि बड़ी महाप्रार्थना सभा थी, एक सज्जन पुरुष के समान, कृपया क्या आप एक और खड़े हो जाएंगे और उसे निकलने देंगे। देखिए वो नगर की ओर जा रहा है, क्या आप एक तरफ खड़े हो जाएंगे। और जकई उधर पेड़ पर बैठा हुआ उसे नीचे देख रहा है, और यीशु सीधा पेड़ के नीचे आकर रुक गया, ऊपर देखकर कहा, जकई वहाँ से नीचे उतरा, आज मैं तेरे साथ खाना खाने तेरे लिए घर जा रहा हूँ। मेरे लिए ये तय हो गया। वो जानता था कि वो वहाँ ऊपर है, और उसका नाम जानता था कि वो कौन था। इससे तय हो गया, मेरे लिए वो मसीह है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि हम जानते हैं मसीह को यही करना था, निश्चय ही। इसलिए उसे उसके साथ घर जाना था। कहा उस दिन खाने के लिए, वो कितना महान समय था, हमें ये स्मरण है। आप जानते हैं कि ये उस समय के लगभग रहा होगा जब गवाहियां चल रही थी। आप देखिए कि ये चेले वहाँ झील पर गवाही दे रहे थे। ये कहीं रात्रि के अंधेरे में हो रहा होगा उधर उत्तरी राज्य में, कि शैतान पहाड़ पर चढ़ रहा होगा और नीचे देखा, उसने देखा कि गवाहियों की सभा में उसने पाया कि वे उसके बिना चले गए। यहाँ उसका मौका था। इसलिए मैं सोचता हूँ वो दृश्य फिर से बदलने वाला था, स्वयं को दोहराया। वे बेदारी के उत्साह में वे उसके बिना चले गए। और मैं विश्वास करता हूँ आज हम में से बहुतों के साथ ये होता है कि इस भ्रम की घड़ी में और इस महान बेदारी के पश्चात जिसकी हमने गवाही दी, ये सारे संसार पर छा गई। प्रत्येक राष्ट्र में बेदारी की आग लग गई और जली। महान चंगाई सभाएं, लोग पवित्र आत्मा ले रहे हैं, हजारों हजार लोग, और उसके उत्साह में जैसा कि वे चेले गवाही दे रहे थे कि उसने क्या किया, और ओ हमने उसे ये करते देखा और हमने उसे वो करते देखा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम भी उन्हीं के समान अलग निकल गए बिना उसके। हम उस महान सुअवसर से अलग हो गए जो कि बेदारी ने दिया था। हम बहुत सारे पैसे बनाने के सुअवसर पर चले गए। कलीसियाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े लाखों डॉलर के स्थान, बड़े विद्यालय, शिक्षा पद्धतियां, और अपने नामधारी को बढ़ा रहे हैं, और तब अपनी साम्यवाद योजनाएं, साम्यवाद विरोधी। आज हम इसी के विषय में बातें करते हैं, और पहली बात कि शैतान ने हमें हमारी उन साम्यवादी विरोधी योजनाओं पर देख लिया है, हमारे बड़े नामधारी योजनाओं पर, और हमारे लाखों और आदि आदि जैसे कि उनके पास हैं, और हम अपनी पुरानी चलन की प्रार्थना सभाओं से हट गए हैं, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वापस आ रहा है जब तक कि आग धीमी नहीं हो जाती। आप चिल्ला सकते हैं और लोगों को वेदी पर लाने का यत्न करें, वे ऐसे चले जाएंगे जैसे वे लगभग मृत हों, आने के लिए भयभीत, और तब सेवकों से आकर उनके साथ प्रार्थना करने को कहें, ओ उसने मुझसे ये क्यों कहा, और वे वहाँ जाते हैं और आप उन्हें नहीं पा सकते, और वे वहाँ कुछ ही मिनटों के लिए खड़े होते हैं, आपकी ओर देखते हैं और वापस जाकर अपनी कुर्सियों में बैठ जाते हैं। मेरे हिसाब से आग बुझ चुकी है, कुछ घटित हुआ है। सुनिए, आज हमें किसकी आवश्यकता है? एक बेदारी की, जिसमें पापी मसीह की ओर ताकते हुए, प्रायश्चित करते हुए, अपने हाथ उठाए वेदी की ओर अनुग्रह के लिए चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आए और सारी कलीसिया परमेश्वर की महिमा के साथ आग की लपट हो जाए। हमारा उत्साह अपने नामधारी कलीसिया को बढ़ाने के सुअवसर के लिए है। हमने अपने सेवकों को शिक्षित करने के लिए बड़े बड़े विद्यालय बनाए हैं और उन्हें परमेश्वर से और अलग कर दिया है, जैसे कि वे आरंभ में थे। परमेश्वर शिक्षा से नहीं जाना जाता, वो ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाता, परमेश्वर विश्वास के द्वारा जाना जाता है। आप परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते, वो व्याख्या से परे है। देखिए ये क्या हुआ, हम पेंतिकोस्तल लोग जो पेंतिकोस्तल हुआ करते थे, हमारी स्त्रियों ने अपने बाल काट लिए, श्रृंगार करना आरंभ कर दिया। हमारे पुरुष इस बात की अनुमति देते हैं, हमारे सेवक इसकी अनुमति दे रहे हैं, वे इस विषय में कुछ भी कहने से डरते हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो कलीसिया उन्हें निकाल देगी। ओ यदि हम प्रचार मंच से और नीचे तहखाने की सफाई नहीं चाहते, ये लज्जा की बात है, ये अप्रतिष्ठा है। अधिक समय नहीं हुआ, कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, भाई ब्रैनम, लोग आपसे प्रेम करते हैं, परंतु कहा आप हमेशा उन्हें फटकारते हैं, उन महिलाओं को फटकारते हैं उनके छोटे छोटे बालों और इस प्रकार की चीजों के लिए। मैंने कहा, बाइबल ये कहती है कि ये महिला के लिए ऐसा होना अप्रतिष्ठा है। जब वो ऐसा करती है तो वो अपने पति का अपमान करती है, और पूरी तरह से ये इसका अंतिम चिन्ह है कि आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। समसून वाले मामले में आप स्मरण करें, लंबे बाल अलग किए हुए का चिन्ह था कि वो संसार से अलग हो गया परमेश्वर के वचन हेतु। और महिलाओं, जब तुम अपने बाल कटाती हो तो आप इनकार करती हैं कि आपके पास संसार से अलग होने का चिन्ह है। आप अतिरिक्त इसके कि बाइबल पर वापस आए, आप हॉलीवुड चली गईं। बाइबल कहती है वे बिना बाल कटाए रहें। देखिए ये लज्जा की बात है, और सेवक इस विषय में कुछ नहीं कहते। इस मनुष्य ने मुझसे कहा, आप क्यों नहीं उन स्त्रियों को छोड़ देते? कहा वे आपका भविष्यद्वक्ता के समान सम्मान करती हैं। मैंने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। कहा कि वो आपका उसी प्रकार सम्मान करती हैं। उन्हें सिखाएं कि कैसे आत्मिक वरदान प्राप्त करें और कुछ करें। आपको उन्हें बड़ी बड़ी चीजें सिखानी चाहिए, महान बातें। मैंने कहा, मैं उन्हें बीजगणित कैसे सिखा सकता हूँ, जबकि उन्होंने अपना कहकेगा भी नहीं सीखा। इस विषय में सुंदर ढंग से कैसे रहें? आप कैसे ये कर सकते हैं? जी हाँ, पहले पहली बात पर जाएं। वर्ष प्रतिवर्ष समस्त राष्ट्रों में ये समय खराब होता जा रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ी है, ये वचन में नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, हमारे पास बेदारी की आग नहीं जल सकती। हमें इस समय घर को साफ करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इसे कभी नहीं करेगा जब तक कि हम फिर से वापस नहीं आएंगे। हमें घर साफ करने के समय की आवश्यकता है। और तुम पुरुषों, तुम अपनी पत्नियों को ऐसी चीजें करने देते हो, जैसे कि छोटे कपड़े पहनना। वे मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट नहीं, वे पेंतिकोस्तल हैं। ये ठीक बात है। भक्ति का भेष, लुदिकियाई कलीसियाई युग, गुनगुने नाम के पेंतिकोस्तल, बस पेंतिकोस्तल नाम नहीं है, ये अनुभव है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का, जो लोगों को निर्मल कर देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम चंगाई की महान सभाएं नहीं कर सकते और आदि आदि। कहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ये शैतान है, हमें बाहर यत्न करते हुए देखा। ठीक है, हम इस विषय में कुछ भी कहते हैं तो वे अपनी सदस्यता बदल लेंगे। स्मरण रखें, आप मसीहों को सराहते नहीं हैं, मसीह कठोर होते हैं, वे परमेश्वर के पुरुष और महिलाएं होती हैं। कौन परमेश्वर का पक्ष लेता है, इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है। आपको उनके पीछे पीछे विनती और राजी करना नहीं पड़ता, और उनकी जी हुजूरी आगे पीछे घूमना नहीं पड़ता। वो तो पलाऊ और मिलावट वाले पौधे हैं, वे किसी काम के नहीं, वे कुछ भी उत्पन्न नहीं करेंगे। मुझे ऐसे ही कुछ स्मरण आता है, ये जल्दी ही प्रजनन का समय था। आज मैंने एक छोटी चिड़िया को देखा, वहाँ एक छोटी गौरैया अपने घोंसले में तिनके लगा रही थी। ये अधिक समय नहीं बीतेगा कि वे अपने अंडों पर बैठकर अपने अंडों में से बच्चे निकालेगी। आप जानते हैं, एक छोटी चिड़िया के पास अंडों का घोंसला होता है, और वो घोंसले के अंडों पर बैठती है और उन्हें हर कुछ मिनटों बाद घुमाती पलटती है। अपने छोटे छोटे पैरों से उन्हें घुमाती है और उन पर बैठती है। अब यदि वो उन अंडों को एक बार गर्म होने के पश्चात ठंडा होने दे तो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। और वो उड़कर जाती है, थोड़ा सा खाना खाती है और वापस फिर वहीं उन पर आ जाती है। आप जानते हैं कि वो पुरानी माँ चिड़िया, वो उन अंडों पर बैठ सकती है। और उन्हें हर दो मिनट में घुमाती है और वो बलिदान और उपवास तब तक रखती है कि वो बेचारी घोंसले से उठ नहीं पाती। परंतु जब तक वो माँ चिड़िया नर चिड़िया के संपर्क में नहीं आती, वे अंडे बच्चे नहीं देंगे। इससे कोई मतलब नहीं आप उनकी कितनी देखभाल करते हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, वे वहीं घोंसले में पड़े रहेंगे और सड़ जाएंगे। और यदि कभी भी पेंतिकोस्तल का समय रहा था कि उन्हें यीशु से मिलना चाहिए था, क्योंकि हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं, केवल सड़े हुए अंडों से भरा हुआ घोंसला, विश्वास का इनकार करके और गिरजों के संग में जा रहे हैं और इसे एक महान बात कह रहे हैं कि पोप के पास बैठे और कह रहे हैं कि ये आत्मिक है। तुम पेंतिकोस्तलों, ये संसार का क्या मामला है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल उन बातों के विषय में बताती है कि ये होगा? और हम प्रसन्न हैं कि मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट अंदर आ रहे हैं और सारी बातें इस प्रकार से हैं। क्या आप अनुभव करते हैं कि जब मूर्ख कुंवारियां तेल खरीदने आई, उसी घड़ी दूल्हा आ गया और उन्हें तेल नहीं मिला? आप जानते हैं कि रैप्चर या उठा लिया जाना इतना गुप्त होगा और इसी किसी समय में जाना होगा कि आप जान नहीं पाएंगे कि ये हो गया, वो चला जाएगा और आप आश्चर्य करेंगे कि क्या हुआ। जैसे कि यूहन्ना पृथ्वी पर आया और उन्होंने उससे कहा, ठीक है, बाइबल कहती है एलिया को पहले आना है। उसने कहा, वो तो आ भी चुका और तुम नहीं जानते। इसी प्रकार किसी दिन होगा, वे कहेंगे, मैं सोचता हूँ कि ये तो पीड़ाओं के काल से पहले होना है, मैंने सोचा उठा लिया जाना होना है, आवाज वापस आ सकती है, ये तो पहले ही हो चुका और तुम्हें ये नहीं मालूम। ओ, ये आपके सोचने से पहले, ओ कलीसिया जाग, अच्छा हो कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं यहाँ शिक्षा के लिए नहीं आया हूँ, मैंने थोड़ा सोचा मैं इस पर झटका दूंगा ताकि आप उस ओर हो सकें। भाई स्मरण रखें, शैतान ने ये बड़ी बड़ी योजनाएं देख ली हैं। एक कलीसिया दूसरे को पछाड़ने का यत्न कर रही है, एक नामधारी दूसरे को गिराने का यत्न कर रहा है, अनपढ़पने को उखाड़ फेंक और उन्हें मनोवैज्ञानिक परीक्षण देना और मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्ति की जांच करें इससे पहले कि वो बाहर अपने उद्देश्य पर जाएं। पेंटिकॉस्ट नहीं, ये प्रेस्बिटेरियन नहीं है, ये पेंतिकोस्तल हैं। किसी निश्चित पेंतिकोस्तल झुंड को मनोवैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है, बड़ा झुंड है, इससे पहले कि वे मिशनरी बाहर जाएं। क्या हो यदि उनका इस प्रकार का परीक्षण होता? उनका परीक्षण हुआ आरंभ में, जब उन्होंने ऊपर वाली कोठरी में तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि आग ऊपर से नहीं आई और परमेश्वर की सामर्थ, ये परीक्षा थी। कोई संसारिक कच्चे नशे में मनोविज्ञान वहाँ नहीं था जिसने उनके मस्तिष्क को उत्तेजित किया हो, या कुछ और कहें, तुम कुल मिलाकर अधूरे हो। जब ये पूर्णतः सिद्ध करता है कि एक मनुष्य जो कि चरम सीमा तक आत्मिक अधीर है, उसे उस स्थिति में होना है कि उसमें चला जाए। इस प्रकार से आप उसी अवस्था में हैं, देखिए, और केवल जो परमेश्वर वर्षों से करना चाह रहा था उसे गड़बड़ कर दिया और वापस अपनी योजनाओं के साथ आ गए और अपने महान, वे उत्साहित हैं जब वे देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं, कहते हैं यदि मैं इन सबको असेंबली में बना लूं, यदि मैं इन सबको वननेस में बना दूं, यदि मैं इन सबको मेथोडिस्ट बना लूं, मेथोडिस्ट सबको मेथोडिस्ट बनाना चाहते हैं, बैप्टिस्ट सबको बैप्टिस्ट बनाना चाहते हैं, पेंतिकोस्तल पेंतिकोस्तल। ओ, आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उन्हें जगत की उत्पत्ति से पहले नियुक्त किया है। हमें सुसमाचार प्रचार करना है बस। परंतु हमारी बड़ी योजनाएं, हम बगैर उस आग के चले गए, हम चले गए और अपनी घर की आग बना ली जैसे कि ये था, और हमारा साम्यवाद, अब हम बहुत डरे हुए हैं कि साम्यवाद अंदर आ गया, ये क्या घटित होने जा रहा है। परंतु आप जानते हैं साम्यवाद बड़ी चीज नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, मैं साम्यवाद से नहीं डरता। तुम पेंतिकोस्तलो, परंतु मैं किससे डरता हूँ? ये एक्यूमेनिकल काउंसिल आप पर अधिकार करने जा रही है। बात ये है, ये पशु का चिन्ह बनाने जा रहे हैं और आपको इसमें जाना है, क्योंकि आप एक संस्था हैं, आपको इसमें जाना ही है या बाहर निकलिए। बात यह है, कोई भी अच्छा समझदार आत्मिक व्यक्ति जानता है कि हमें एक और झील पर की गवाही की आवश्यकता है। अब हम पाते हैं और हमारे पेंतिकोस्तल केवल इसे निगल रहे हैं, कांटा, डोर और त्रिकुन्ना, ये कितनी महान चीज होगी। जब मेथोडिस्ट प्रेस्बिटेरियन लूथरन चर्च ऑफ क्राइस्ट पेंतिकोस्तल, उसमें जाने के लिए आपको अपने महान प्रेरितों की शिक्षा का इनकार करना होगा, उन्हें भी वैसे ही करना होगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा। ये सब रोम के साथ एकत्र हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिद्ध किया गया है, वचन ऐसा कहता है। इन प्रचारकों के साथ क्या मामला है जो कि लोगों को बिना चेतावनी दिए इन बातों को इस स्थिति में आने दे रहे हैं? परमेश्वर उनसे पूछेगा, ठीक इस कठिनाई के समय में, वे कठिनाई में थे, वे थे, इसमें साम्यवाद नहीं आ रहा है, ये एक्यूमेनिकल काउंसिल इन सब पर अधिकार जमाने जा रही है। और स्मरण रखिए, जब आप कहते हैं ये कब घटित हुआ, तब तक देर हो चुकी होगी, आप पशु का चिन्ह ले चुके होंगे, तब आप इसमें होंगे। अच्छा है, आप जहाँ कहीं हैं इससे अभी अलग हो जाएं। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर के राज्य में मोहर बंद हो जाएं। मसीह की देह, मसीह की रहस्यमय देह, पवित्र आत्मा के द्वारा इसमें बपतिस्मा लिया जाता है, इसमें सदस्य नहीं बना जाता, इसमें लिया गया है, इसमें बात की गई है, इसमें अन्य भाषा बोली गई है, इसमें चिल्लाया गया है, आप इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये ठीक बात है, निश्चय ही। अब हम ये देखते हैं कि पीड़ाएं एकदम से आती हैं। ओ, शैतान ने देखा और कहा, ओ ये लोग तो क्रोध से हट गए, ये लोग तो केवल ऊपर नीचे कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक महान समय बिता रहे हैं। आप समझे क्या, मेरा समय है कि इन्हें डुबा दूं, मैं अब इनके साथ हो जाऊंगा। इसलिए वो पहाड़ के पीछे से उठा और अपनी विषैली फूंक मारने लगा। आश्चर्यकर्म के दिन बीत गए। मैं समझता हूँ कि अंततः ये लोग परेशान हैं। मैं सोचता हूँ कि इनकी एक बुद्धि की परीक्षा होनी चाहिए इससे पहले कि ये विदेश में कार्य को करें। पेंतिकोस्तलो, ओ देखिए, उसकी विषैली श्वास वचन को मार रही है। ओ मैं सोचता हूँ कि ये कुछ और है, मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, जैसे नामधारी कलीसियाओं ने किया वैसे ही सीधे पीछे की ओर जा रहे हैं। वे ठीक इसी मार्ग पर चल रहे हैं, वे चलेंगे। ये इसे मार देगा, जिस घड़ी आप इसे संस्थागत करते हैं ये इसे मार देता है। तदा यही हुआ है, तदा यही होगा, वो फिर कभी नहीं उठेंगे। इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस लुदिकिया काल में मसीह कलीसिया से बाहर था, खटखटा रहा था, अंदर आने का यत्न कर रहा है, और वे इसका पक्ष नहीं ले सकते, वे इसे सुन नहीं सकते। अब हम पाते हैं जिस घड़ी में हम रह रहे हैं कठिनाइयां अंदर आ गई हैं, और तब देखना आरंभ करते हैं कि अब आश्चर्यकर्म नहीं हो रहे हैं जैसा कि वे पहले थे। बीमार घर बीमार वापस जाते हैं। ये परमेश्वर के कारण नहीं, ये लोगों के बीच बेदारी की कमी के कारण। कोई बेदारी नहीं है, वे बैठकर सुनते, घर जाते और कहते हैं, भाई मेरे अनुमान में ये बहुत ही अच्छा था। ओ देखिए, वहाँ वो उत्साह नहीं, वहाँ लोगों में वो चीज नहीं है जो वहाँ होनी चाहिए। मुझे स्मरण है यहाँ अरकानसा में 15 वर्ष पहले जब मेरी छोटी सी सभा वहाँ जॉन्सबोरो में थी, जब 40,000 लोग इसमें उपस्थित होने का यत्न कर रहे थे, नगर में लगभग 15,000 लोग सभा में आए, और वे कपास के ट्रकों के नीचे सोए और सब कुछ, और अपने बीमार बालकों के ऊपर कागज पकड़े रहे केवल भीतर आने के लिए। वे अपने अपने स्थानों में बैठ गए और दिन और रात नहीं हटे, और उनके प्रियजन उनके लिए हैमबर्ग लेने गए और पेय की बोतल, और सारे सारे दिन वहीं डटे रहे। दिन आया और गया, उनके हृदय अग्नि में जल रहे थे। केवल परमेश्वर ने एक छोटा सा कार्य किया था, उनमें आग लग गई थी और उनमें से सैकड़ों अंदर आए। आज रात्रि वो अब भी वही परमेश्वर है जो कि अब से 15 वर्ष पहले था। आज रात्रि वो वही परमेश्वर है जो कि वो जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाए थे। परंतु ये क्या है, हम में पूरा उत्साह था और अपनी संस्थाएं बनाना चाहते थे, और ये और वो बनाना चाहते थे, कुछ महान और दिखावटी जो जॉनसन के मुकाबले पर हो, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट के, प्रेस्बिटेरियन के। आप उन्हीं में से नहीं है, नहीं, आप नहीं है। वे नामधारी लोग हैं जो कि ठीक हैं, उनके विरुद्ध कुछ नहीं, उनमें बहुत से अच्छे मसीह हैं, परंतु आपको अविश्वासी लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। लोग जो उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, आप उनका पक्ष ना लें। आप जानते हैं कि इसकी परेशानी ये है कि आप कलीसिया में हॉलीवुड लाना चाहते हैं, समझे? आप अपने भवन को सुंदर बनाने का यत्न कर रहे हैं, आप अपने नामधारी कलीसिया को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि जब तक वो लोगों का ध्यान आकर्षित ना कर ले, हम उनकी ओर नहीं जाना चाहते, हम उन्हें अपनी ओर करना चाहते हैं। हर चीज चमकने वाली, स्मरण रखें, हॉलीवुड संसारिकता के साथ चमकता है जबकि सुसमाचार नम्रता में दमकता है। चमकने और दमकने में बहुत भिन्नता है। सुसमाचार नम्रता में दमकता है और कोमलता में, छोटेपन में और सामर्थ्य में है, जबकि हॉलीवुड चमकता है और हर कोई शोर और हल्ला मचा रहा है और उसमें जा रहा है। देखिए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हम ऐसी ज्योति जीना चाहते हैं। उसने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक अपना स्वाद खो दे, ये उसकी सामर्थ्य सुसमाचार में है। हमारी कलीसियाओं में कुछ हलचल होनी चाहिए ताकि मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और वे सब यहाँ आने की इच्छा करें। हमें नमकीन होना चाहिए, नमक प्यास जगाता है, प्यास जगाता है, नमक नमकीन है। यदि ये संपर्क में आता है, इसे संपर्क में आना है। और हम पाते हैं कि हमारा महान आवेश मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट के साथ तुलना करने में यत्न में है। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें, और बड़े बड़े स्थानों और अच्छे शानदार लोग और बड़े विद्यालय और बड़े कॉलेज और हर चीज इस प्रकार की, हम आवेश में आ गए हैं और परेशानी अंदर आ गई है। और पवित्र वचन वाला मस्तिष्क चारों ओर देखता है और कहता है, यहाँ एक मिनट रखो, यहाँ क्या हम तब एक्यूमेन काउंसिल में जा रहे हैं? क्या हमारे सारे झुंड इसमें जा रहे हैं? निश्चय ही आप जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप ध्यान दें और देखें कि हम नहीं जा रहे हैं। बाइबल कहती है तुम जाओगे शत प्रतिशत और यीशु मसीह बाहर होगा। चांद ने स्वयं को काला कर लिया इससे पहले कि पोप, जब सबसे पहला वाला पोप रोम गया, उस रात्रि आपको आकाश में चिन्ह दिखाया गया बिना पहले से बताए। ये हुआ कैसे? प्रभु इन दिनों में शानदार कार्य कर रहा है। जब अंधकार की इस महान घड़ी में जब वे वहाँ थे तो हवा आई, जीने की सारी आशा जाती रही। यदि आपकी नामधारी कलीसिया एक्यूमेनियन काउंसिल में जाती है तो आप क्या करने जा रहे हैं? उन सब हमारी बड़ी चीजों का क्या होने जा रहा है जो हमने यहाँ इस पृथ्वी पर बनाई है? अंतिम आशा समाप्त हो गई है। परंतु आप जानते हैं, जैसे ही वे चिल्लाने को थे, सारी आशाएं जा चुकी थीं, वे बच नहीं सकते थे। और यकायक उन्होंने उसे पानी पर चलकर आते हुए देखा। अंधकार की घड़ी में वो चलता हुआ आया। आप जानते हैं क्या, जब उसने उन्हें छोड़ा था वो जानता था कि ये घटित होने जा रहा है, इसलिए वो सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया जो कि उस स्थान में था। जितना आप ऊंचे पर जाएंगे उतना ही आगे का आप देखेंगे। आप जानते हैं वो ऊपर चढ़ गया ताकि वो उन पर दृष्टि रख सके, और वो जानता था कि ये आ रहा है, और उसने इस दिन के लिए यहाँ होने के लिए भविष्यवाणी की है। जैसा सादोम के दिनों में था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। जब मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा था तभी पुत्र ने प्रकट होना था। ये दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी चिन्ह ढूंढेगी, इसका एक चिन्ह होगा, ये इसे ऐसे ही अस्वीकार करेगी जैसा उन्होंने तब किया, परंतु ये पुनरुत्थान का चिन्ह होगा। वो अब भी जीवित है, वैसे ही कर रहा है जैसे पहले किया था। इस महान घड़ी में हम पाते हैं वे सारे चेले निराशा में थे। वो ऊंचे पर चढ़ा ताकि उन सब पर दृष्टि रख सके। वो वहाँ पहाड़ पर बैठा हुआ उन्हें देख रहा था, और अब इस बार वो पहाड़ पर नहीं चढ़ा, परंतु वो कब्र में से उठा और हवा में से उठता हुआ चांद सितारों के ऊपर, जब तक वो इतना ऊंचा नहीं चढ़ गया कि नीचे झुककर स्वर्ग को देखे। वहाँ वो ऊंचे पर बैठ गया। अब उसकी आंख गौरैया पर है, और मैं जानता हूँ वो हमें देख रहा है, वो देख रहा है। और ठीक यहाँ अंधकार की घड़ी में, जबकि सब कलीसियाएं महान योजनाओं में जा रही हैं, और उनके पास ये और वो योजनाएं हैं, बाकी कलीसियाओं की तरह योजनाबद्ध कर दिया गया है, वे नामधारी कलीसियाएं। और क्या घटित हुआ इस अंधकार की घड़ी में, जब तक कि वास्तविक आत्मा से भरे हुए लोग आश्चर्यचकित हैं कि क्या घटित होने जा रहा है। मेरे बालकों को देखो, पुरुष कहता है, मेरी पत्नी को देखो, इसे देखो। और वे रविवार या बुधवार रात्रि की प्रार्थना सभा जल्दी छोड़ देते हैं ताकि वो जाकर लूसी हम तुझसे प्रेम करते हैं देख सकें, या ऐसा ही कुछ टेलीविजन पर। परमेश्वर के प्रेम से अधिक संसार के प्रेमी, उनके समान हाव भाव। उस दिन मैंने एक महिला को बताया, उसने अपने कपड़े इतने तंग पहन रखे थे। मैंने कहा, बहन ये कपड़े बहुत तंग हैं, मुझे आपको ये बताना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये ऐसा ही है, आप मसीही हैं और आप ठोकर बनेंगी। उसने कहा, देखिए भाई ब्रैनम, क्या आपको मालूम है, उसने कहा वे इसी प्रकार के बनाते हैं। मैंने कहा, वे अब भी सामान बेचते हैं और उनके पास सिलाई मशीन है, कोई बहाना नहीं है। जी हाँ, सुनिए मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको कुछ बता दूं, आपको लेकर नहीं, नहीं श्रीमान, मैं आपको यातना की स्थिति से बाहर रखना चाहता हूँ। जब तक वो आत्मा आप पर है आप ये करने जा रहे हैं, ये ठीक बात है, आपको इससे बाहर उत्पन्न होना है। इस टिप्पणी पर आप स्वयं ही चुनाव कर सकते हैं, परंतु मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए, जो आपका हृदय है वहाँ पर आपका खजाना भी है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप अपने पति के लिए कुमुदनी के समान निर्मल हों, युवा लड़की अपने लड़के मित्र के लिए, परंतु एक दिन परमेश्वर व्यभिचार करने के लिए आपसे प्रश्न करेगा। जब आप इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं तो आप दोषी हैं। यीशु ने कहा, जो कोई भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो उसके साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका। और जब उस पुरुष को उत्तर देना होगा, उस पापी को, आपको देखकर व्यभिचार करने के लिए किसने स्वयं को उसके सामने उपस्थित किया? तुम पेंटिकॉस्टल स्त्री हो, इस पर सोचो, आपके लिए लज्जा की बात है, समझे, आपके लिए लज्जा की बात है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसी कारण मैं ये कह रहा हूँ, प्रेम सुधारात्मक होता है। हम एक महान बदतमीजी पर हैं, एक महान परिधान की बदतमीजी। ये संसार के चलन के समान है। उसने कहा, संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम न रखो। यदि तुम करते हो तो परमेश्वर का प्रेम तुम में है ही नहीं। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि आप कितना अन्य भाषा में बोलते हैं, ऊपर नीचे कूदते हैं, नाचते, बाल कटाते, इस प्रकार के परिधान पहनते हैं। तुम पुरुषों इसकी अनुमति देते हो। तुम्हारे अपने फल बताते हैं कि तुम कहाँ पर हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई आश्चर्य नहीं है कि हम इस प्रकार की उथल पुथल में हैं, जैसा कि है साम्यवाद की हवाएं, कलीसियावाद की हवाएं, एक्यूमेल संस्था की हवाएं। ये मिलने का समय है, एक होने का समय है। यूनियनें मजदूरों को जोड़ रही हैं, इस विषय में झगड़ा कर रही हैं। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, वे जुड़ रहे हैं। गिरजे या कलीसियाएं आपस में जुड़ रहे हैं। ये सब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि मसीह और दुल्हन का जुड़ना तय है। ये यही बोल रहा है। इन सब बातों की छायाएं दर्शा रही हैं कि मूल आ रहा है। अब ध्यान दें, जैसे कि हम बंद करते हैं क्योंकि मुझे बहुत देरी हो रही है। अब ध्यान दें, इस महान घड़ी में जब जीवित रहने की सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थीं, उन्होंने देखा कोई आ रहा है, पानी पे चलता हुआ पास आ रहा है। और वो बात, उसका दुखद भाग, ध्यान से सुने, केवल एक चीज जो उनकी सहायता कर सकती थी। वे डरे हुए थे, उन्होंने कहा, ये भूत दिखाई पड़ता है। आप जानते हैं, ये हो सकता है एक आत्मा। यदि ये फिर घटित नहीं हुआ, वे इससे डर गए। वे भावी बताने वालों से डर गए। आप किसी प्रकार की शैतानी शक्ति से डर गए। जब यीशु ने कहा ये इस दिन में घटित होगा, केवल एक चीज जो उनकी सहायता कर सकती थी, वो यीशु मसीह। कोई दूसरी नामधारी कलीसिया नहीं, वे सारे के सारे नहीं मिल रहे हैं। वे इसे पहले से भी और खराब करने जा रहे हैं। केवल एक ही चीज आपकी सहायता कर सकती है, वो यीशु मसीह। जब उसने अंतिम दिनों में आने की प्रतिज्ञा की इस रूप में, और ये प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए, जैसे कि प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र अब्राहम के पास लौटा, पहला बीज अब्राहम का शाही वंश यीशु होगा, कहा वही चीज देखेगा। प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र से पहले परमेश्वर स्वयं को देह में प्रकट करेगा, और वैसे ही करेगा जैसे यीशु ने किया, जैसे कि उसने कहा वो करेगा, जैसे कि अंतिम दिनों में करने के लिए कहा गया। और यहाँ पर वे सारी प्रतिज्ञाएं, जिन्हें दर्जनों की संख्या में हम आपके सम्मुख रख सकते हैं, ठीक यहाँ आपके सम्मुख, जो कि ये घटित होने थे। और वो कलीसियाएं जिन्हें इसे स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए था, मैं आंशिक रूप से इससे डरता हूँ, वे हमारे झुंड से संबंधित नहीं है, देखा। और वे इससे भयभीत हैं। केवल एक चीज उन्हें मसीह के पास ला सकती है, वह स्वयं मसीह है, और वे इससे डरते हैं कि ये डरावना है। ओ, मैं नहीं जानता, वो आत्मा संबंधित हो सकता है, आप समझे, और मैं इसके विषय में नहीं जानता। भयभीत होना ही केवल एक चीज थी जो कि उनकी सहायता कर सकता था। और निराशा की इस अंधकार की घड़ी में वे चुनी हुई कलीसिया, वो झुंड जो यहाँ पर उपस्थित है, डरता है कि ये भूत संबंधित हो सकता है। वे इसके साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहते। तब वो मीठी आवाज आती है, डरो नहीं, ये मैं हूँ। वो वचन है, क्या वो नहीं है? वो वचन होने के लिए कभी नहीं बदलता। अब आप क्या वचन को ये कहते हुए नहीं सुनते? वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। भयभीत ना हो, ये मैं हूँ। हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, सांझ गर्म है, घड़ियां अंधकार में है। किस प्रकार आग वेदी पर से चली गई, आप खेत में से चुन रहे हैं। आपने कहा राज्य उस मनुष्य के समान है जो जाल लेकर समुद्र पर गया और उसमें डाला, और जब उसने उसे बाहर खींचा, राज्य इस प्रकार का था। प्रभु परमेश्वर, किसी दिन अंतिम मछली जो पानी में है, आपने कहा उन्होंने सब प्रकार के ले लिए। वो सुसमाचार का जाल सब प्रकार के पकड़ता है, वो कछुआ पकड़ता है, बदबू वाली मछली, केकड़े, सांप, कबाड़ खाने वाली मछली, हम नहीं जानते कि वो क्या पकड़ता है, परंतु वहाँ कुछ मछलियाँ हैं जिसके पीछे आप हैं, आप ही हैं जो न्यायी हैं। परंतु हम अनुभव करते हैं जल्द ही कछुआ, बदबू वाली मछली और सब वापस कीचड़ में चले जाएंगे, वापस पानी में। परंतु किसी दिन वो अंतिम मछली जो कि अभिषिक्त और पहले से ठहराई हुई है, उसको अंदर आना है। देह का वो अंतिम भाग झील में से निकाल ली जाएगी। आपने लूथर, वेस्ली, एलेक्जेंडर कैम्बेल, जॉन स्मिथ, कॉल्विन नॉक्स, पिनी, टैंक के और आदि आदि के पेंटिकॉस्टल युग में एफ एफ बॉसवर्थ और फ्रेंचमैन उन महान लोगों के दिनों में जाल फेंका। आपने बिली संडे के दिनों में जाल फेंका उन युगों में होते हुए, और अब भी समुद्र को छान रहे हैं। क्या कोई आज रात्रि यहाँ बैठा है प्रभु? यदि है, होने दें कि वे कुएं पर की उस छोटी महिला के समान हो। यहाँ तक कि अपने व्यभिचार की दशा में वो फिर भी पहचानती थी कि आप मसीह थे। उसने वो चिन्ह देखा, वो वही था। उसने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आप भविष्य रखता है। उसका कोई विचार नहीं था कि वो मसीह हो सकता है। उसने कहा, हम मसीह की राह देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा वो हमें ये सारी बातें बता देगा। और आपने कहा, मैं वही हूँ। वो यही था। अब आज रात्रि प्रभु, वे ये देखें कि ये मैं हूँ। डरो मत, ये मेरी प्रतिज्ञा है। रोगियों को चंगा करें प्रभु, खोए हुओं को बचाएं, खाली को भर दें। होने दे कि आज रात्रि हम जाएं और अपने हृदय में कहें, जब हम उनके समान जो अमाउस से आए थे जा रहे थे, तो क्या हमारे हृदयों में उत्तेजना ना हुई जब आज रात्रि उसने भवन में हमारी सेवा की उसकी दिव्य उपस्थिति। उन्होंने कैसे जाना कि ये आप थे? उन्होंने आपको भीतर आने के लिए निमंत्रण दिया और उनकी आंखें खुल गईं। होने दे कि हम में से प्रत्येक आज रात्रि आपको निमंत्रण दे। यदि हम नहीं समझते तो हम आपको भीतर आने के लिए निमंत्रण दें, जैसे कि हो। केवल यही मात्र एक मार्ग है कि आप स्वयं को प्रकट करें। और हमने ध्यान दिया कि किस विधि से आपने स्वयं को पुनरुत्थान के पश्चात प्रकट किया। आपने कुछ वैसा ही उसी प्रकार से किया जो आपने क्रूस पर चढ़ने से पहले किया था। अब आज रात्रि प्रभु आए, आपने कहा कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। हमारे लिए फिर से करें, जैसे कि आपने अपनी देह के दिनों में जब आप पृथ्वी पर खड़े थे किया। हम उन लोगों के समान हल्के हृदय के साथ घर जाएंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब आज रात्रि सभा में मैं जानता हूँ कि बहुत बुरी गर्मी है और बाहर निकलने के लिए हमारे पास 20 मिनट और हैं। मैं हूँ, मैं जो करता हूँ मैं उसे रोक नहीं सकता या बंद नहीं कर सकता। मैं किसी चीज के द्वारा उभारा जा रहा हूँ। मेरे सारे जीवन में सदा ऐसे ही हुआ है और ये सदा सही रहा है। इसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, केवल वही जो बाइबल में था। मैं इसे नहीं रोक सकता, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। जैसा भी है ये करता है। और मुझे निश्चय है, यदि मैं आज्ञाकारी हूँ तो कोई है जिसे इसकी आवश्यकता है और मैं आज्ञाकारी रहूँगा। और उस दिन मैं उस महान पौलुस के समान होना चाहता हूँ। संत पौलुस ने कहा, मैं किसी मनुष्य के लहू का दोषी नहीं। ओ, मैं आपको सत्य बता देना चाहता हूँ, न कि जैसा मैं हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और यदि आपके पास एक छोटा लड़का हो, महिला, इसके लिए सोचता हूँ, आप जिन्हें मैंने कुछ क्षण पहले फटकारा था, आप बहने, आप जिनके कटे हुए बाल हैं और आदि आदि बातें, यदि आपके पास एक छोटा लड़का है बाहर सड़क पे बैठा हो और आपने कहा, प्रिय जूनियर, अच्छा है कि तुम अंदर आ जाओ। प्रिय, हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वे तुम्हारे पास से अपना वाहन चला कर ले जाएं, तो आप उस बालक से प्रेम नहीं करते। ये ठीक बात है। आप वहाँ बाहर जाएंगे और उसे झकझोड़ेंगे या उसे भीतर लेकर आएंगे। ये ठीक बात है, आप उससे प्रेम करते हैं। सुसमाचार इसी प्रकार से है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वे जिन्हें प्रेम करता है, प्रत्येक उस बालक को जो उसके पास आता है वो ताड़ना देता और डांटता है। यदि आप ताड़ना को सहन नहीं करते हैं तो आप चले जाते हैं और इस विषय में क्रोध करते हैं, तो आप अवैध संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। इसलिए स्मरण रखें, ये केवल पवित्र वचन है। अब एक वचन उसकी ओर से, एक शब्द वो मेरे जीवन में लाखों बार बोलने से अधिक होगा, ये वो है। हम उसकी प्रतिज्ञा जानते हैं, हम जानते हैं करने के लिए क्या प्रतिज्ञा की है। अब मैं नहीं जानता कि वो हम वहाँ से होंगे। क्या उसने प्रतिज्ञा, क्या उसने प्रार्थना पत्र बांटे हैं? क्या तुमने आज पत्र बांटे हैं? ये क्या था? ठीक है, समय बचाने के लिए हम नंबर एक से आरंभ करें। अब वे लगभग पूरे भवन में हैं, जे नंबर एक। और अब हमारे पास कुछ बिखरे हुए हैं। एक बार हमने यहाँ से आरंभ किया, इस वाले से, बाद में कुछ पीछे से और इधर से और उधर से, परंतु हमने उन्हें सब में मिला दिया। परंतु वे लोग जो यहाँ प्रतिदिन आते हैं, उन्हें अवसर है कि पंक्ति में आएं। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप यहाँ इस सभा में कितने जानते हैं। यहाँ पर लगभग दुगने लोग सभा में चंगे हुए जितने कि यहाँ ऊपर मंच पर चंगे हुए। निश्चय ही आप ये जानते हैं। देखिए, प्रार्थना पत्र तो केवल लोगों को यहाँ बुलाने के लिए है, पवित्र आत्मा उनके बीच में आए, क्योंकि ऐसा करने में आप अभ्यस्त हैं। यहाँ तक कि हमारे पास अभी भी नहीं है, हम प्रार्थना पत्रों को हटा सकते हैं। जैसा कि हमने गत रात्रि किया। गत रात्रि हमारे पास प्रार्थना पत्र नहीं थे, पवित्र आत्मा उनके बीच गया, उनके पास प्रार्थना पत्र नहीं था। और मैंने बहुत सी चीजें देखी, मैंने उनके विषय में कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं जान पाया कि ये ऐसे ही था या नहीं। अंधेरा उनके ऊपर अभी भी था और मैंने बस उसे छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था, उन्हें बुलाने का कोई लाभ नहीं था। जो कुछ भी वो कहता है ठीक है, इसलिए सुनिए कि वो क्या कहता है। अब आपने क्या बताया कि वो जे था, जे नंबर एक। किसके पास ये प्रार्थना पत्र है, हाथ उठाएं। पुत्र तुम गलती कर रहे हो, कोई और। ओ मुझे खेद है। ओ पीछे पीछे दीवार के साथ महिला, आप यहाँ आ जाएं। वो लड़का अभी अभी उन प्रार्थना पत्रों को लाया है, भाई बॉर्डर्स या बिली, एक या कभी कभी दोनों उन प्रार्थना पत्रों को लोगों के सामने मिला देते हैं और तब आपको कार्ड देते हैं, जो भी आप चाहते हैं। हम नहीं जानते, वो तो केवल ये वाला 5 नंबर पा सकता है, वो 7 नंबर पा सकता है, ये वाला 15 पा सकता है और वो 95, और हम नहीं जानते। और तब जब मैं आता हूँ, जहाँ से मेरे हृदय में आता है मैं वहीं से पुकारता हूँ। इससे कोई मतलब नहीं कि ये कहाँ है। मैं बस यदि मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं गिनता हूँ कि एक पंक्ति में कितने हैं, एक पंक्ति में बांट देता हूँ और उत्तर पाता हूँ, समझे। और तब यदि मैं नहीं करता, क्यों, मैं केवल जो कुछ भी मेरे मस्तिष्क में पहले आता है मैं बुलाता हूँ। नंबर 1, J, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10। देखिए उन्हें आने दीजिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अच्छा है, इसी प्रकार से आए। रुकिए, एक दूसरी ओर चला गया मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ठीक है। अब यहाँ ये 10 है, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, ये 5 और हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, मैं केवल 4 देखता हूँ। बीस ने उत्तर दिया, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि आप बहुत सारे एकदम खड़े हों। अब यदि हम इनमें से होकर, और ये काफी है, हम कुछ और को भी लेंगे। हम नहीं बुलाते, हो सकता है हम थोड़े से औरों के लिए भी कोशिश करेंगे। 5 और के लिए कोशिश करें, 21 से 25 तक। 1, 2, 3 पीछे, वहाँ पीछे 4, 1, 2, 3, 4, ये 5 हैं, ठीक है। अब हम यहीं रुकें। अब पंक्ति में 25 हैं और इन्होंने यहाँ पंक्ति बना ली है। अब मैं आपसे एक सहयोग चाहता हूँ, क्या आप मेरी ओर अपना पूरा पूरा ध्यान देंगे अगले 15-16 मिनटों के लिए? क्या आप ऐसा करेंगे? अपना पूर्ण हृदय खोलेंगे। अब स्मरण रखिए मैंने क्या कहा है, इसे अपने कानों पर से ना निकलने दें, जैसे कि बत्तख की पीठ पर पानी डालना, जैसे कि पुरानी कहावत है, ऐसा ना करें, इस पर विचार करें। यदि मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊं जो कि वचनानुसार ना हो और इस घड़ी के लिए प्रतिज्ञा, तो आपका कर्तव्य है कि आकर प्रबंधक से मिलकर उसे इस विषय में बताएं। ये ठीक बात है, मैं वचन को छोड़ और कुछ नहीं सिखाता। और यदि मैं वचन के साथ बना रहता हूँ, और यदि मैं कहता हूँ कि ये इस प्रकार से है और परमेश्वर ये बाइबल में है, यदि प्रभु का दूत मुझे कुछ ऐसा बताता है जो बाइबल में नहीं है, तो ये परमेश्वर का दूत नहीं है। ये ठीक बात है, उसने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं बताया जो वचन में ना हो, और आप मेरे गवाह हैं। उसने कभी भी सैकड़ों हजारों हजार बार और संसार की भाषाओं में कभी भी ऐसा नहीं बताया। उसने एक बार भी गलत बात नहीं बताई या कोई ऐसी बात नहीं कही जो घटित ना हुई हो। सुनिए, प्रबंधक और उनसे जो वे यहाँ पर हैं, पूछें, ये जो कुछ आप यहाँ देखते हैं ये उसका परिपक्व रूप है, क्या ये ठीक है भाइयों? क्यों, वहाँ बाहर और अंदर निजी जीवन में जहाँ वो कहता है इस स्थान में जाओ और ये देखो और ये घटित होगा और यहाँ पर ये कहो, ये निरंतर सारे समय वर्ष दर वर्ष होता है। लोग जो इस सभा में हैं केवल ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं, परंतु यदि आप भक्ति भाव में रहेंगे। अब यहाँ इस प्रार्थना पंक्ति में जितने खड़े हैं मेरे लिए अपरिचित हैं, यदि आप हैं तो अपने हाथ उठाएं, ठीक है। कितने यहाँ पर ऐसे हैं जो जानते हैं कि मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता, अपने हाथ उठाएं। अब जबकि धन्यवाद, मैं चिंता नहीं करता कि आप कहाँ हैं, यदि आप बालकनी में हैं, दीवार के सहारे, सारे में, जहाँ कहीं भी हैं, मैं करने जा रहा हूँ। अब ये आपकी भलाई के लिए है, ये आपके लाभ के लिए है, देखिए ये आपके लाभ के लिए है। मैंने सोचा कि ये मेरा छोटा पोता मुझसे बातें कर रहा है, परंतु वो नहीं था। आज रात्रि मेरा छोटा पोता यहीं कहीं पर है, वो इतना ही बड़ा है, और मैंने सोचा ये छोटा पॉल था, और वो सदा यही कहता है कि वो मंच पर आकर खड़ा होकर मेरे लिए प्रचार करेगा, और वो अभी 2 वर्ष का पूरा नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ कि वो छोटा लड़का अपनी माँ को ढूंढ रहा है। इसलिए स्मरण रखें, मैं आपकी सहायता करने का यत्न कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर ये जानता है कि मैं आपकी सहायता करने का यत्न कर रहा हूँ। देखा, अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लाभ उठाएं यदि वो हमारे बीच में आता है। अब उस व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में सोचें जो शरीर में कार्य कर रहा है, जैसा कि उसने अंत में करने की प्रतिज्ञा की है। कितने जानते हैं कि उसने ये प्रतिज्ञा की है? वैसे ही जैसे नीचे सादोम में था जब सरदूत ने अपनी पीठ घुमाई और वो परमेश्वर था। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर था? कितने विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर था? निश्चय ही वो था। बाइबल कहती है कि वो और वो यीशु ने इसका उल्लेख किया। अब ध्यान दें, अब आप वहाँ बिना प्रार्थना पत्र के हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें, चाहे आप जहाँ हों। अब स्मरण रखें, ये बातें ध्यान दें, ये आपको बताती हैं कि आप चंगे हो गए हैं, या जो मैं आपको करने के लिए बताता हूँ। ध्यान दें, ये क्या कहता है? यदि ये केवल आपको बताता है कि अपना विश्वास बनाएं, और जब आपका विश्वास उस बिंदु तक आ जाता है तो आप बढ़कर और परमेश्वर को स्वीकार करें। ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि स्वर्ग पिता ये जानता है। मैं यहाँ पर पंक्ति देखता हूँ, मैं एक भी व्यक्ति अपनी जान पहचान का नहीं देख पा रहा हूँ। मैं नहीं देख सकता, परंतु लगभग 2 या 3 लोग सारी सभा में जिनको मैं जानता हूँ। इस समय मैं नहीं जानता, मैं कह सकता हूँ एक दिखाई पड़ता है। मैं उस एडमंड वे को जानता हूँ, वो कुछ मिनटों पहले यहाँ था। मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे देखा, मैं चूक गया। यदि मैं गलती ना करूँ, एक पुरुष और उसकी पत्नी, मैं उन्हें देखता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, और एक छोटी लड़की जिसका नाम फ्रिट्ज जिंगर है, ओहियो से है। क्या वही है भाई? आप फ्रिट्ज जिंगर, आप घुमाओ में बैठे हैं जहाँ, वहाँ भाई और बहन फ्रिट्ज जिंगर हैं, ओहियो से मेरे मित्र हैं, और इन्हें छोड़कर यहाँ ये पीछे बैठे हैं। यहाँ इस ओर मैं देखता हूँ एक बूढ़ा व्यक्ति 92 वर्ष में चल रहा है, जिनका नाम विलियम डाउच है, वो और उनकी पत्नी, वो नर्स है। ओहियो में विलियम डाउच मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। अधिक समय नहीं बीता, वे 91 वर्ष के थे। उनका हृदय बंद हो गया था, हृदय का दौरा, और उनकी पत्नी ने मुझे बुलाया कि जल्द से आ जाएं। वो उस समय मर रहा था, और फिर वो मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहा है। मैं उन्हें देखने जा रहा था, मैं चिंतित था, और मैं रुका, और मेरा एक पहिया बाहर को निकल रहा था, और मेरा टायर कटकर टुकड़े टुकड़े हो रहा था, और मैं टेक्साको में ठहराव में आ गया और जाकर थोड़ा सा पेट्रोल लिया, और उन्होंने निकलकर उसे देखा, और मैंने देखा भाई डाउच मेरे आराधनालय से निकलकर बाहर आ रहे हैं, मुझसे हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा प्रभु की महिमा हो, और मैंने पीछे इस ओर देखा, और यहाँ वो सड़क पर आ रहे हैं और मुझसे हाथ मिलाया। मैं उनके पास गया, मैं उसके डॉक्टर से मिला, एक युवा यहूदी या अधेड़ आयु का व्यक्ति, यहूदी पुरुष, और मैंने कहा डॉक्टर उसके विषय में क्या है? कहा कि उसमें लड़ने का अवसर भी नहीं है, कहा कि वो ऑक्सीजन पर है, कहा वो वहीं मर जाएगा। उसने कहा याद रखें, वो 91 वर्ष का है। मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, कहा हृदय पूरी तरह से असफल है, कुछ नहीं किया जा सकता, कहा कि ये जाने का समय है, और मैंने कहा जी हाँ श्रीमान, परंतु वो नहीं जा रहा है, बस यही बात है। मैं भीतर गया और अपना हाथ ऑक्सीजन के तंबू में डाला। मैंने कहा भाई डाउच, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसने मेरी ओर देखा। वास्तव में उसका नाम वो जर्मनी है, DAUGH, और मैं केवल डाउच उच्चारण करता था। देखा, मैंने अपना हाथ ऑक्सीजन तंबू में डाला और कहा भाई डाउच, तुम मुझे सुन सकते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आप नहीं जा रहे हैं, मैंने देखा तुम नहीं जा रहे हो। तब से एक सप्ताह पश्चात मेरे आराधनालय में खड़े थे जो कि आराधनालय में से चले आ रहे थे, परंतु भाई डाउच। मैंने सभा को छोड़ा और नदी पर एक कैफेटेरिया में पहुंचा खाने के लिए, और जब मैं कार में से बाहर निकला और सड़क पर जा रहा था तो भाई डाउच अपने हाथ उठाए हुए आ रहे थे। वे दर्शन कभी भी असफल नहीं होते। और वो व्यक्ति 91 वर्ष का और कैलिफोर्निया की प्रत्येक सभा में होता है। भाई डाउच, क्या आप अपने हाथ उठाएंगे कि कहाँ बैठे हैं, ताकि लोग देख सकें कि अब एक वास्तविक सिपाही यहाँ ठीक यहाँ बैठे हैं। देखा, 91 वर्ष बूढ़े और प्रत्येक सभा में आते हैं। जब मैं यहाँ आराधनालय में होता हूँ तो वो प्रतिदिन सैकड़ों मील कार चलाकर मुझे उपदेश देते हुए सुनने आते हैं और वापस जाते हैं। परमेश्वर, सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन मैंने कहा, मैं उनसे बातें कर रहा था, मैंने कहा भाई डाउच, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भाई ब्रणम, एक निवेदन है, जब वो आता है तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। कहा चिंता मत कीजिए, ये सुरक्षित है निश्चय ही। वो व्यक्ति अंदर आया, बपतिस्मा लिया, वो अंदर आकर और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और सब कुछ। मसीह एक बढ़िया सेवक। अब मैं प्रत्येक से कहना चाहता हूँ कि वास्तविक भक्ति भाव में आप इस ओर देखें और प्रार्थना करें। अब यहाँ पर कितने शिक्षक जानते हैं कि वो महायाजक है इस समय, जिसे हम अपनी दुर्बलताओं के साथ छू सकते हैं। देखिए, यदि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है और वो वही महायाजक है, तो वो उसी प्रकार कार्य करेगा। केवल वो, उसकी देह वहाँ है परमेश्वर के सिंहासन पर। कितने ये बात जानते हैं कि यीशु की देह वहाँ सिंहासन पर है, परंतु वो हमारी देह को अपने प्रगटीकरण के लिए प्रयोग करता है, जैसा कि उसने करने की प्रतिज्ञा की है, जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि शांत बैठें, आदर सहित देखें, प्रार्थना करें। अब स्वर्गीय पिता, मैंने पूरा यत्न किया है कि जितना भक्ति भाव में मैं इस विषय में हो सकता हूँ हो जाऊँ। अब प्रभु, आपकी ओर से केवल एक शब्द, और तब होने दे कि एक छोटा सा धीमा सा शब्द इस सभा में आए और कहे, ये मैं हूँ, डरो नहीं। पिता, इसे ग्रहण करें, और मैं स्वयं को इस संदेश के साथ जो आज रात प्रचारा गया, तेरे पुष्ट किए हुए वचन के साथ समर्पित करता हूँ। आपको ये नहीं करना है, परंतु आप करेंगे या आप करते हैं, क्योंकि आपने ये प्रतिज्ञा दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इसे यीशु के नाम में ग्रहण करेंगे, आमीन। और प्रत्येक वास्तविक आदर भाव, बिल्कुल भक्तिपूर्ण भाव में रहे। आप कैसे हैं? अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वचन दूंगा, यदि प्रभु करता है, मैं नहीं जानता, परंतु, और मैं इस प्रकार से प्रचार कर रहा था। देखा, ये एक प्रकार का अभिषेक है, ये दूसरे प्रकार का अभिषेक है। ये केवल आशीष थी, ये एक बात थी जो आप में से जीवन ले लेता है। अब ये महिला यहाँ खड़ी है, मैंने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या हम अपरिचित हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है, वो मुझे जानता है। क्या आप जानती हैं कि हम यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? हमें न्याय के दिन इसके लिए उत्तर देना होगा। आपको ये मालूम है? आप जानती हैं कि अब हम क्या करते हैं? परमेश्वर हम में से इसके लिए वहाँ उत्तर मांगेगा। मैंने ये किसी उद्देश्य के लिए कहा है। अब यदि प्रभु यीशु मुझ पर ये प्रकट कर देगा कि आप क्या कर रही हैं, आपके विचारों में क्या है, या कुछ इस प्रकार का, तो क्या आप विश्वास करेंगी? आपको इसका विश्वास करना होगा, क्या आप नहीं करेंगी? क्या आप लोग जो सभा में हैं इसका विश्वास करेंगे? अब हम वैसे ही खड़े हैं जैसे वो स्त्री कुएं पर थी, और हमारा प्रभु एक पुरुष और एक महिला पहली बार मिल रहे हैं, समझे? हम यहाँ मिल रहे हैं जैसे ये संत यूहन्ना चौथा अध्याय। अब पवित्र आत्मा कहेगा, यदि आप यहाँ किसी और के लिए हैं, यदि आप रोगी हैं, यदि ये घरेलू समस्या, यदि ये आर्थिक समस्या, जो भी है, मेरा कोई विचार नहीं है, परंतु वो करता है, परंतु वो आपके हृदय के विचारों को जांच लेता है। वो वचन है, मैं नहीं कर सकता, मैं मनुष्य हूँ। आप थोड़ी सी परेशान हैं, यही कारण है कि मैं ये कर रहा हूँ, आप समझी? घबराहट आपकी एक परेशानी है, ये ठीक बात है। और आपको प्रमेह रोग भी है, ये दूसरी चीज है जो गड़बड़ है, ये ठीक बात है। उलझने, बहुत सी चीजें गड़बड़ हैं, ये ठीक बात है। यदि ये ठीक है तो अपना हाथ उठाएं। देखा, क्या आप विश्वास करती हैं कि वो आपको चंगा कर देगा? आप करती हैं। अब ये घबराहट आपकी आयु के कारण है, देखिए, परंतु अब ये आपको छोड़ देगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वास के द्वारा हम कैलवरी पर जाएंगे और रक्तदान करेंगे। अब बिल्कुल ठीक यही जो उसने किया, उसने उस स्त्री को कुएं पर बताया कि उसकी क्या परेशानी थी। उसके बहुत सारे पति थे, आपका क्या था? मैं सोचता हूँ घबराहट और दो या तीन और चीजें आपके साथ गड़बड़ हैं। ये ठीक बात है कि नहीं? ये वही बात है। अब जब वो शमौन के पास आया, उसने बताया कि वो कौन था। क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आपका क्या नाम है? क्या इससे आप अधिक विश्वास करेंगी? ये करेगा। श्रीमती स्ट्रॉन्ग स्टाउट, क्या आप विश्वास करती हैं? जाएं और विश्वास करें, और आप, ये समाप्त हो गया, आमीन। आइए, आप विश्वास करते हैं? मैं आपके लिए भी अपरिचित हूँ, मैं आपको नहीं जानता, परमेश्वर आपको जानता है। क्या विश्वास करते हैं कि वो मुझ पर प्रकट कर सकता है कि आपकी क्या परेशानी है? और यदि वो करता है तब प्रभु परमेश्वर धन्य है। क्या ये सत्य है? अब चिंता नहीं करनी है, ये वो है जो आप अनुभव कर रही हैं, वो ठीक है। आप भी घबराहट की स्थिति से परेशान हैं, मस्तिष्क की विकलता और बहुत सरलता से टूट जाते हैं और मूत्राशय रोग से पीड़ित हैं, कलेजे में भी कुछ गड़बड़ है और आप में अरक्तता एनीमिया है। ये ठीक बात है? आप में कुछ है, ये मनुष्य यहाँ प्रकट हो रहा है। क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है, आपके पति को भी चंगा और स्वस्थ करता है? आप सोचती हैं कि पेट की बीमारी छोड़ देगी और वो चंगा हो जाएगा? वो इसी से पीड़ित है, जाकर अपना हाथ उस पर रखें और उसे ऐसा ही बताएं, वो बीमारी से छोड़ देगी। मैं आपसे अपरिचित हूँ, प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है, क्या वो नहीं जानता? क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? यदि प्रभु यीशु मुझ पर ये प्रकट कर दे वो बात जो कि आपके हृदय में है, क्या विश्वास करते हैं कि वो आपको चंगा कर देगा? आपको कुछ परेशानी थी, आपके पित्त में गड़बड़ी थी एक बात, और दूसरी बात इसके कारण पित्ता फोड़े की स्थिति में हो गया है, परंतु ये वो है जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया है। अब दूसरी बात, वे इसकी शल्य चिकित्सा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्या ये ठीक है ना? अब क्या आप विश्वास करते हैं कि वो इसे हटा सकता है? आप सोचते हैं कि आपका विश्वास उसमें है? अब आप देखिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप विश्वास करते हैं? ठीक है, जाएं और जैसा आपने विश्वास किया वैसे ही आपके साथ हो। मैं समझता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, प्रभु परमेश्वर हम दोनों को जानता है। क्या विश्वास करती हैं कि वो इस योग्य है कि मुझ पर ऐसी बातें प्रकट कर सकता है जिससे आपकी सहायता हो? आप विश्वास करती हैं कि वो करेगा? मैं कह रहा हूँ निश्चय ही, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब आप में बहुत सी बातें गड़बड़ हैं, बहुत सी उलझने और बातें, और जैसे कि खांसी, आप इस पर काबू नहीं पा रहे हैं और आप वास्तव में घबराए हुए हैं, और ये ठीक बात है। आपके हृदय पर एक बोझ भी है, ये बोझ किसी के लिए है जो कि आपका पुत्र है, और उसकी एक कोई घरेलू परेशानी है। वो और उसकी पत्नी हमेशा विवाद करते रहते हैं, चल रहा है, और ये बोझ आप पर है, ये ठीक बात है। अब आप अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं और ये सब साफ हो गया है और चला गया है। अब आप विश्वास करें, प्रभु आपको आशीष दे। श्रीमान, आप कैसे हैं? मैं आपसे अपरिचित हूँ और आप मुझसे अपरिचित हैं, और अब ये आरंभ हुआ। अब जो दर्शन में देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि सारा घर ज्योतिमय हो गया है, एक प्रकार का चक्रवात चारों ओर घूम रहा है, समझे? परंतु क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मुझ पर प्रकट कर सकता है कि आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? आप विश्वास करते हैं कि वो करेगा? मैं भी ये विश्वास करता हूँ। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूँ कि आपकी आत्मा से संपर्क स्थापित करूँ, मैं ठीक इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मुझे छोड़, ये कुछ और है जो कर रहा है। मुझे स्वयं को अपने से पूर्णतः अलग करना होता है, ये वो स्वयं करता है, आप समझे? अब एक चीज जिससे कि आप भयानक रूप से पीड़ित हैं, वो घबराहट की स्थिति है, और ये घबराहट की स्थिति कुछ समय के लिए होती है, ये ठीक बात है। और ये घबराहट की स्थिति आपके उच्च रक्तचाप के कारण भी है, और आपको एक झटका लगा था, यही है। देखिए, या तो आप प्रचारक रहे हैं या प्रचारक हैं, अब आप प्रचारक हैं, मैंने आपको प्रचार मंच पर खड़े देखा, तो फिर परमेश्वर पर विश्वास करें और ये घबराहट आपको छोड़ देगी। वे सारे सेवक जिन्हें ये है, आप चंगे हो जाएंगे, अपने प्रचार मंच पर वापस जाएं, परमेश्वर की आज्ञा मानें और वचन के साथ यीशु मसीह के साथ स्थिर रहें। आप विश्वास करते हैं कि आपके पीठ का दर्द जब आप कुर्सी पर बैठे थे चला गया? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? ठीक है श्रीमान, तो फिर आप आगे बढ़ते जाएं, कहते रहें धन्यवाद प्रभु। आइए महिला, आप कैसी हैं? आप विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास हूँ? ठीक है, क्या विश्वास करती हैं कि वो महिला वाली परेशानी, स्त्री रोग, आपको छोड़ने जा रहा है? क्या आप करती हैं? तो फिर आगे बढ़िए, कहें प्रभु आपका धन्यवाद हो। गुर्दे का रोग, पीठ का कष्ट, आपकी पीठ में, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपको इससे चंगा करेगा? आप विश्वास करते हैं कि वो आपको ठीक कर देगा? ठीक है, अपने मार्ग पे बढ़ जाएं। आइए महिला, मैं आपसे अपरिचित हूँ, यदि मैं आपसे कुछ भी ना कहूं, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है कि आपको चंगा करे? आप करेंगी, ठीक है। यदि आप करती हैं तो आपके पेट का कष्ट, मैंने आपको पहले कह दिया, देखिए ये चला गया, देखिए मैंने आपको बता दिया। आप कैसे हैं श्रीमान? परमेश्वर हृदय में निवास करता है और आपका हृदय यहाँ बहुत ही हाल में दर्शा रहा है, खराब है। क्या विश्वास करते हैं कि वो उसे ठीक कर देगा? अपने मार्ग पर विश्वास करते हुए जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप विश्वास करते हैं वो इसे ठीक कर देगा? आप घबराए हुए हैं क्योंकि आपको भी पेट का कष्ट है, आंतों का फोड़ा खाने के बाद ये आपको परेशान करता है। आप विश्वास करते हैं कि ये सब चला गया है? जाइए अपने खाने के लिए कुछ लीजिए। उठना आपके लिए कठिन है, पीठ का दर्द आपको बहुत परेशान कर रहा है। यदि आप विश्वास करें तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। क्या आप करेंगी? ठीक है, जाइए और प्रभु यीशु आपको पूरी तरह से चंगा करे। आप किस लिए परेशान है? केवल ये कहते हुए जाएं, अब मैं और परेशान नहीं होऊंगा और आप नहीं होंगे। जाइए और विश्वास कीजिए, ये ठीक है श्रीमान। आइए महिला, अब इथियोपियन स्त्री और श्वेत व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो उस दिन मिला यीशु, उनके बीच में अलगाव था जैसे कि दक्षिण में हुआ करता था, परंतु अब हम में नहीं है यीशु। ये लोग जाने कि सब लोग परमेश्वर के लोग हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। देखिए, चाहे वो यहूदी या सामरी थी। अब यदि परमेश्वर आपकी सहायता ना करे तो बहुत जल्द ही जोड़ों का दर्द आपको अपाहिज कर देगा, परंतु क्या आप विश्वास करती हैं कि वो आपकी सहायता करने वाला है, आपको चंगा करेगा? जैसे कि महिला ने किया, अपने मार्ग पर जाएं और अपने लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने आपके लिए कितने महान कार्य किए हैं। ठीक है, अब वहाँ शल्य चिकित्सक तेजी से चाकू निकालता है। एक मिनट, ये वो स्त्री नहीं थी। अब एक क्षण रुकें, अब हर कोई आदर भाव में रहे। क्या शैतान कुछ करने का प्रयास कर रहा है? यहाँ है फोड़ा, फोड़ा। आप दोनों को, ये ठीक बात है, आपको फोड़ा है, उस महिला को फोड़ा है, और ये शैतान सहायता के लिए चिल्ला रहा है एक दूसरे में से, परंतु पवित्र आत्मा भी चिल्ला रहा है। आप किस पर विश्वास करने जा रहे हैं? ठीक है, महिला चारपाई से खड़ी हो जाएं, उस रोगी खटोले में से उठ जाएं, उसमें से निकलें और विश्वास करें। जाइए अब उस पर विश्वास करें, आमीन। क्या विश्वास करते हैं? सारी बातें संभव हैं। क्या विश्वास करते हैं आप जो सभा में हैं? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आइए अब हम अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये करने का सही समय है। हर व्यक्ति, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, परमेश्वर की महिमा करे, अपने हाथ उठाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी महानता के लिए आपकी महिमा करते हैं और रोगियों की चंगाई के लिए।